हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी, अय नवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, अय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे, अय राधा। जय राधा दामोदर राधा, दामोदर राधे, अय राधा। राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनि, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 नितय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नितय गौर हरि बोल, नितय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तनम की, शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 1। यच्छृण्वतो पैत्य रतिर्वृतृष्णा सत्वं च शुद्धेत अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। यच्छृण्वतो पैति रतिर्वृतृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। यं शृण्वतो पैत्यरतिर्वृतृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। Anybody want to recite? यशृण्वतोपैत अरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत अचिरेण पुंसः सख्यम् तदेव हारं वदान्यसे चेत् यशृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्यम् माता जी भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत् ृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च साख्यं तदेव हारं वदमन्ये यशृण्वतोपैतिरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसान् भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की श्री राजा उवाच राजा ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा येन येन अवतारेण जिन जिन अवतारों के द्वारा प्रदर्शित लीलाए भगवान भगवन हरि हरि ईश्वर नियंता करोति प्रस्तुत करता है कर्ण रम्याणी कानों को सुनने में सुखद मनज्ञानी मन के लिए आकर्षक च भी नह हम सबों के प्रभो हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी यशृण्वतः इन कथाओं को सुनने वाले का अपैति दूर हो जाता है अरति ही अनाकर्षण वितृष्णा मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भावनामृत में अरुचि उत्पन्न कराता है सत्वम च हृदय के भीतर अस्तित्व शुद्ध्यति शुद्ध बनाता है अचिरेण तुरंत पुंसः किसी भी व्यक्ति का भक्ति ही हरो भगवान के प्रति भक्ति तत्पुरुषे वैष्णव के साथ च भी सख्यम संगति के लिए आकर्षण तत्एव केवल वह हारम भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए वद कृपा कृपा करके मन्यसे आप उचित समझते हैं चेत यदि अनुवाद राजा परीक्षित ने कहा एक्चुअली दो श्लोक है दोनों का अनुवाद साथ में पढ़ेंगे हम पहला श्लोक था श्री राजो वाच येन येनावतारेण भगवान हरिर ईश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभो राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहानी लगने वाली है इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में
आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाता है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तात्पर्य, जैसे कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख है अभोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। हमारा भौतिक जगत माया है, जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र उड़ानी माया, असन्न पिक्लेश आस देह। जब तक हमारी यह नश्वर देह रहेगी, तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है, जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवण कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त है। कृष्ण के विभिन्न अवतार है, वे सभी अद्भुत है, अतएव वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले है। प्लीज नोट, किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के सामने आकर्षक नहीं है। चूंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के कोई लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए यह हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, त्रिनाव्रत तथा शक्टासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रहती। कृष्ण भावनामृत को जागाने का विधि है अधो श्रद्धा तथा साधु संग। कृष्ण की लीलाएं भक्तों के उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके, तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति कर रहे हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी ने अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजना शलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं नैतान्मनस्तमकथास्तविकुण्ठनाथ संप्रियते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रं कामातुरमहर्षशोकभयशनार्थ तस्मिन् कथं तव गतिं विमुषानिधीना।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पे। पहले कि हम इस प्रवचन को चालू करें, उससे पहले मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि दो व्यक्तियों के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। एक व्यक्ति है मेरे मित्र थे रसामृत नो प्रभु रसामृत सिंधु प्रभु। हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले उनका निधन हो गया है। कुछ भगवान की लीला समझ में नहीं आती, उस हिसाब से उनका निधन हुआ है। तो उनके लिए कृपया प्रार्थना करें। और कुछ महीने पहले मेरे पिता श्री भी स्वर्ग, उनका भी देहांत हुआ है, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। सो आई एम ट्राइंग टू डेडिकेट दिस लेक्चर टू बोथ ऑफ दिस पर्सनैलिटीज हु आर वेरी क्लोज टू मी एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो प्लीज़ डू प्रे फॉर बोथ ऑफ देम एंड देन विल स्टार्ट आवर लेक्चर। हरे कृष्णा। तो यह जो श्लोक लिया है वो सीधे सीधे लीला से संबंधित नहीं है, लेकिन वह लीला सुनने के पांच मुख्य हमें ये बता रहा है कि फायदे क्या है भगवान कृष्ण की लीला सुनने के। तो आप बाहरी दुनिया में जाओगे, आप PhD कर रहे हो या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे हो या फिर कोई रिसर्च कर रहे हो या फिर कोई भी कर रहे हो, TV शो कर रहे हो कॉमेडी, तो वहां पे नकल करना कतई अलाउड नहीं होता है। प्लेगियरिज्म इज नॉट अलाउड, क्योंकि कोई भी किसी का नकल करता है, किसी का कॉपी करता है, तुरंत उस पर केस हो जाता है कि इसने मेरा क्या किया, कॉपी किया, मेरा गाना कॉपी किया, मेरा जोक कॉपी किया, मेरा रिसर्च कॉपी किया। तो बहुत संभाल के रहना पड़ता है। इनफैक्ट इसीलिए सब लोग कॉपीराइट और पेटेंट डालते हैं। किसी का डिजाइन भी चोरी किया तो क्या हो जाता है, आपको सजा हो जाती है। शायद ऐसी कोई संस्था है दुनिया में जहां पे ऑफिशियली आपको कॉपी करने की अनुमति मिलती हो, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है ISKCON। यहां पे आप चाहे जितना कॉपी कर लो, इनफैक्ट जितना ज्यादा कॉपी करोगे उतना ज्यादा आपका मान बढ़ेगा। एक बार प्रभुपाद बैठे थे चेन्नई में, वहां पे एक श्री वैष्णव स्कॉलर आए, वे प्रभुपाद की भगवद्गीता के लेके आए और प्रभुपाद से वाद विवाद करने लग गए। प्यार से वैष्णव का संवाद चल रहा था, तो बोले भक्तिवेदान स्वामी जी, आपने जो भगवद्गीता लिखी है उसमें देखिए, पहला चैप्टर निकाला, पहला श्लोक निकाला, ये भाग आपने रामानुजाचार्य की भगवद्गीता से लिया है, दूसरा श्लोक ने ये भाग अपने रामानुज के चैप्टर से लिया है, दूसरा अध्याय निकाला है, 10 बार बताया कि रामानुजाचार्य से लिया है। भक्त लोग बड़े परेशान हो गए, ये तो प्रभुपाद की निंदा कर रहे हैं। भक्त लोग अपना भाई वाय ऊपर करके उसको उठा के फेंकने वाले थे। प्रभुपाद बोले शांत रहो शांत रहो। ऐसा उसने 2 घंटा प्रभुपाद को बताया कि कैसे प्रभुपाद की भगवद्गीता ये कोई नई चीज ना होके रामानुजाचार्य की जो टीका है उसके अनुरूपी है, उसकी ही समान कॉपी है। और ये भक्त जाने के बाद प्रभुपाद के भक्त आए, बोले प्रभुपाद आपने क्यों रोका नहीं उसे, इतने बार आपको बता रहा था वो। तो प्रभुपाद कहे कि एक्चुअली वहां बता रहा था कि कैसे मैं एक ऑथेंटिक वैष्णव और एक ऑथेंटिक संप्रदाय पालन कर रहा हूं। आई एम वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द संप्रदाय। सो इट वॉज नॉट, यहां कोई एक दोष नहीं था, लेकिन यह क्या था, एक एप्रिसिएशन था। तो इसीलिए बिंदास किसी का भी लेक्चर सुनिए, कोई भी शास्त्र पढ़िए और जैसे कहते हैं उठा के डाल के बता दिए भक्तों को, कुछ फर्क पड़ेगा, इनफैक्ट आपका एप्रिसिएशन बढ़ेगा। और फिर कहने तो क्या, आज कलयुग की बुद्धि है, संस्कृत को समझता नहीं है, शास्त्र को समझते नहीं है, इसलिए जो बड़े बड़े भक्त है, जो बड़े बड़े आचार्य है वर्तमान, उनसे भी बात सुन के हम क्या कर सकते, सीधे सीधे बता सकते हैं। तो इसलिए मैं एक भक्त से बात कर रहा था, बोले मैं क्या करूं, मैं तो पापी हूं, मैं करता हूं कॉपी, है कि नहीं? तो हम सब पापी है तो हम भी कॉपी करेंगे। तो इसमें से जो मैं बात करूंगा, शायद ही जो कुछ गलत है वो मेरा मटेरियल है, जो कुछ सही है वह कहां से, सब बिलीव इन द बेस्ट कट कॉपी पेस्ट। तो जो कुछ अच्छा लगेगा वो किससे लिया है, कोई ना कोई भक्त से। हालांकि सबका रेफरेंस हम नहीं दे पाएंगे, सब किसी भक्त से लिया है, ये जान लीजिए आप। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कृष्ण की लीला आप सुनेंगे तो कृष्ण की लीला सुनने के वालों का भी गुणगान किया है। सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं दसवें अध्याय के तेरहवें, दसवें स्कंद के तेरहवें अध्याय में पहला श्लोक बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यस्य श्रुण्वन् अपि कथामुहु। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं साधु पृष्ठम महाभागो त्वया भागवतोत्तम। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आप सभी भक्तों में उत्तम है, भागवतोत्तम, आप सभी भागवतों में क्या है, उत्तम है। परीक्षित महाराज बड़े संभ्रम में पड़ गए, भाई मैं क्यों सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे तो शाप मिला है, मैं तो इधर बैठ के कथा सुन रहा हूं, क्या बात है, क्यों बोल रहे हैं आप कि मैं भागवतोत्तम हूं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्यों, यन्नूतनय शीशस्य, आप भागवत सभी भागवतों में उत्तम है। क्यों, क्योंकि आप कृष्ण की लीला सब सुन चुके हो बचपन में, डिओटी परिवार में आपका जन्म हुआ था, अरे परिवार में जन्म होने से पहले ही भगवान की लीलाएं आपको दिखने को मिली, वर्चुअल रियलिटी नहीं एक्चुअल रियलिटी में देखने को मिली, तो आपको सभी भगवान की लीलाएं पता थी, फिर भी आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसे आतुर हो रहे हो जैसे कि आपने ये लीला कभी सुनी ही नहीं, ऐसे उत्साह जिसमें होता है उन भक्तों को कहते हैं भागवतोत्तम। तो जो लीलाएं हमने सुनी है, इनफैक्ट इस्कॉन में आने के बाद साधारणतया सभी भक्तों को कृष्ण की सभी लीलाएं पता होती है, तो भक्तों को क्लास देना तो बड़ा टेंशन आता है, बताए तो क्या बताए, कोई भी लीला बताए चालू होने से पहले कंक्लूजन पता होता है, उसका परिणाम बताने से पहले उनको सब पता होता है कि इसका परिणाम क्या है। लेकिन क्यों वापस बार बार हम बताते हैं कथा, वही वही कथा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो नूतन यशीसस्य, जो व्यक्ति जो भक्त भगवान की कथा को हर बार नूतन, नूतन का मतलब होता है नया समझता है, वह भक्त उस हिसाब से जब सुनता है तो उसे कौन सा भक्त कहा गया है, भागवत उत्तम, भागवतों में सबसे उत्तम। तो यह एक होप है सभी प्रचारकों के लिए कि वही लीला बार बार बोलेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, भक्तों को श्लोक बता देंगे वह सुनते रहेंगे। तो कृष्ण की लीलाएं बहुत गुह्य है। कृष्ण भगवान और बाकी अवतारों में जैसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं उसमें फर्क है, क्यों, क्योंकि कृष्ण की जो लीला है वह बहुत आकर्षक होती है बाकी अवतारों की लीला से, कहने का अर्थ यह नहीं कि बाकी अवतारों की लीला कुछ निम्न स्तर की है, यह हम अच्छे हम गुड बेटर बेस्ट बेस्ट के आगे की बात कर रहे हैं, यह तथाकथित उसका क्या है, तथाकथित उसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की लीलाएं बताएंगे तो समझने के लिए इतनी आसान नहीं है, बिकॉज लॉर्ड इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, भगवान पूरी तरह से विरोधाभास रहित नहीं है, पूरा विरोधाभास कृष्ण में है। जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हम, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, एक दिन पहले एक दिन बाद में कंफ्यूजन है, भगवान कृष्ण का जन्म किधर हुआ था, मथुरा में कि गोकुल में, कंफ्यूजन है, भगवान कृष्ण का रंग कौन सा है, काला है कि नीला है, विरोधाभास, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, भगवान कृष्ण ने गोपी के साथ शादी की कि नहीं की, विरोधाभास, भगवान कृष्ण गोवर्धन है कि नहीं है, विरोधाभास, भगवान कृष्ण ने वृंदावन के बाहर पैर रखा कि नहीं रखा, विरोधाभास, भगवान कृष्ण वापस वृंदावन आए कि नहीं आए, वापस, विरोधाभास, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के भूमि में शस्त्र को उठाया कि नहीं उठे, वापस, विरोधाभास, भगवान कृष्ण लीला समाप्त करने के समय उन्होंने देह का त्याग किया कि नहीं किया, वापस, विरोधाभास। कृष्णा इज फुल ऑफ अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस। इतना ही नहीं, भगवान की लीला देख के भक्त भी पूरी तरह से विरोधाभासित हो जाते हैं, उन्हें भी समझता नहीं है। शंकर पंडित उस दिन बहुत अच्छे से बता रहे थे, वे बता रहे थे कैसे ब्रह्मा जी जब गौवे और गौवों को चुराया, गोपालों और गौवों को चुराया, बाद में जब वापस आए ब्रह्मा जी स्वयं भ्रमित हो गए मैंने जो चुराया वही सही है, यहां पे जो देख रहा हो क्या वही सही है, ये सही या वो सही। और जहां पे उन्होंने ये वाक्य बोला उस गांव का नाम पड़ा सही। वृंदावन में जाएंगे परिक्रमा करने के, वहां पे एक गांव उसका नाम क्या है, सही है कि नहीं। तो इसीलिए कृष्ण एक बहुत अलग प्रकार की व्यक्तिमत्व। कैसे अलग प्रकार की व्यक्तिमत्व है? अगर आपको कोई कार्य करना है, उदाहरण के लिए आपको जन्माष्टमी आना है, तो सब प्रभु जी लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास नया धोती कुर्ता वॉश करके प्रेस करके धोके पहन के आएंगे, तिलक लगाएंगे, माताएं लोग साड़ी पहन के आएंगी, है कि नहीं। किसी को रनिंग के लिए जाना है, धोती कुर्ता पर रनिंग के लिए जाएगा क्या? नहीं, वो वैसा अटायर पहनेगा, एडिडास शूज पहनेगा, शॉर्ट्स पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, फिर भागने जाएगा। किसी को कुश्ती करना है तो वो कौन सा अटायर पहनेगा, कौन से कपड़े पहनेगा? कुश्ती के कपड़े पहनेगा ना, उसका लंगोट पहनेगा, ऊपर बनियान टाइप रहेगा, और कुश्ती करने से पहले थोड़ा सा पुशअप मारेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेगा, बॉक्सर देखा रहेगा, ऐसा ऐसा करते रहते हैं बॉक्सिंग में जाने से पहले, कि उनको वार्म अप होना है, नहीं तो हाथ ठंडा पड़ जाएगा, पहला मुक्के में नीचे गिर जाएगा। अभी कृष्ण जब कंस के एरिना में जा रहे थे, जहां पे मल्लखम, ये जो क्या बोलते उसे, रेस्लिंग मैच हो रहा था, वहां पे जब जा रहे तो कैसे गए कृष्ण? सबसे पहले मथुरा में गए, शॉर्ट वॉर्ट कुछ पहना नहीं कुश्ती करने वाले का, सबसे पहले गए उस वॉशरमैन के पास, धोबी के पास, उसे बोला ये बहुत सुंदर कपड़े हमें दे दो। वो धोबी बोला नहीं दूंगा, ये राजा के कपड़े हैं। भगवान ने उसके गले को टच किया, उसको मार दिया, कपड़े पहने, खुद को डेकोरेट किया जैसे कोई पार्टी में जाने वाले। और जाने वाले कहां थे? युद्ध करने के लिए। जाने वाले कहां थे? कंस को मारने के लिए। उतने में रुके नहीं भगवान, फिर सुदामा नाम का भगवान का सेवक मौजूद था, उसके पास गए, बहुत प्रसन्न हो गया, उसने घर पे बुलाया, उनके पैर धोए, भगवान की स्तुति की, बोले आप क्या चाहते हो? भगवान बोले आपको जो अच्छा लगता है मैं दो। सुदामा एक माली था, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे गारलैंड, जितने सुंदर गारलैंड हमारे माता लोग बनाते वैसे गारलैंड उन्होंने भगवान को पहनाए। जा रहे कहां पे है? युद्ध करने के लिए। क्या पहन के? गारलैंड पहन के। इतने में ही रुके नहीं, थोड़ी देर के बाद थोड़े आगे गए, वहां पे कुब्जा थी, कुब्जा से उन्होंने सेंटेड ऑयल्स लिए, अत्तर लिए, वो अपने सर को लगाए, जा रहे कहां थे? युद्ध करने। सोचिए कृष्ण की पर्सनालिटी समझ नहीं सकते, ही इज वेरी मिस्टीरियस पर्सन। इसीलिए हमें लगता है कि कृष्ण का लीला समझना इतना आसान नहीं। तो क्या कृष्ण में वाकई विरोधाभास है? आर देयर रियली कॉन्ट्राडिक्शन इन द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण और इन द लीला ऑफ कृष्ण? भागवतम दसवा स्कंद तीसरा अध्याय बताता है, तो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुद्यते, क्लियर कट बताता है, देर आर नो कॉन्ट्राडिक्शन इन यू, हे भगवान आपके अंदर कोई भी विरोधाभास नहीं है। और इसीलिए हमें यह विरोधाभास समझने के लिए, कृष्ण की लीला समझना इतना आसान नहीं है, यह विरोधाभास समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुबड़ी लगता है। वी रिक्वायर द क्रचेस, वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ आचार्यस, वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ प्रीवियस आचार्यस एंड प्रोपर। तो इसीलिए इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कृष्ण कथा सुनने का। तो यहां पे पांच फायदे बताए हैं कृष्ण कथा सुनने के। यत श्रुण्वता का मतलब है जो कोई इन लीलाओं को सुनता है। अपैति का मतलब है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट होते हैं उसके? पांच चीजें नष्ट होते हैं। सबसे पहले है अरति, अरति चली जाती है। किसमें अरति? भगवान की लीला सुनने की अरति। वितृष्णा का मतलब है विषय भोगों के प्रति जो हमारी तीव्र तीक्ष्णा है, तीव्र आसक्ति है, वह भी क्या हो जाती है? चली जाती है। तीसरा फायदा है सत्वम च शुद्धति, हमारा हृदय पूरी तरह से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। चौथा है भक्तिर हरो, भगवान के प्रति भक्ति हमें प्राप्त होती है। और पांचवा फायदा है कृष्ण कथा सुनने के तत्पुरुषेच सख्यम, भगवान के जो भक्त है उनके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। तो कौन कौन से पांच फायदे हैं कृष्ण कथा सुनने के? सबसे पहला अरति चली जाती है, दूसरा वितृष्णा भोगों के प्रति जो तृष्णा है वह चली जाती है, तीसरा सत्वम च शुद्धति हमारा हृदय साफ हो जाता है, चौथा भक्तिर हरो भगवान की भक्ति बढ़ती है, तत्पुरुषेच सख्यम। और कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तुरंत। कितना समय लगता है? तुरंत। इसीलिए जब भागवतम सुनते हैं तो भागवतम सुनना ही भक्ति है, भागवतम सुनने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता है. यू डोंट हैव टू डू समथिंग आफ्टर हियरिंग भागवतम. व्हाट इज द एक्टिविटी? डिवोशनल सर्विस क्या है? भक्ति क्या है? भागवतम को केवल ध्यान से श्रवण करना ही यहां क्या है? भक्ति है. परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात भागवतम सुना, उसके बाद कुछ किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, सीधा कहां चला गया? भगवत धाम चला गया. सो भागवतम इज नॉट टू बी जस्ट हियर. तत् श्रुणु भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भागवतम को केवल सुनना है हमें, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं. पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. ये जो भागवतम है ये कंडेंस फॉर्म में लिक्विड है. आपको ग्लास दिया है, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स है, आपके भक्ति को पोषक तत्व दिए गए. आपको ग्लास को उठाना है और केवल उसे क्या करना है? पीना है. उसे एनालाइज नहीं करना है, उसे देखना नहीं क्या है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, केवल उसे क्या करना है? श्रवण के द्वारा पीना है. लेकिन अभाग्यवश अरति, हमारे मन में क्या है? अरति. तो इसलिए रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि यह अरति क्यों है हमारे मन में, क्योंकि हमें भवरोग हो गया है, जॉइंडिस हो गया है. और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं, जॉइंडिस हो गया तो आपको क्या करना है? आपको पीना है शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पीना है, गन्ने का रस पीना है. अरे कितना कड़वा लगता है गन्ने का, जिसे जॉइंडिस हो गया कड़वा लगने दो. लेकिन आपको क्या करना है? वापस उसे ही पीना है. जितना कड़वा लगेगा उतना ज्यादा गन्ने का जूस पीना है, क्योंकि वो गन्ने का जूस जो कड़वा लग रहा है उसे पीते 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 ही एक दिन जीवा में क्या आ जाएगा? स्वाद आ जाएगा. और जो गन्ने का जूस कड़वा लग रहा है उसी गन्ने के जूस से हमारी क्या आ जाएगी? वापस जीवा पे टेस्ट वापस आ जाएगी. उसी प्रकार भगवान की लीला सुनना कड़वा लगता है. जैसे ही हम जय राधा मां गाते हैं, एक SMS चलाता है निद्रा देवी को कि हम सोने के लिए तैयार है कि नहीं. तो जैसे ही हम बोलना चालू करते हैं हमें क्या आ जाता है? नींद आती है. आने दो, फिर भी क्या करो? सुनो. नींद आती है फिर भी सुनो, पैर दुखता है फिर भी सुनो, कोई और एक्टिविटी फिर भी सुनो, क्योंकि वही दवाई है. और कोई दवाई है क्या? देयर इज नो अदर मेडिसिन. और कोई दवा ही नहीं है अपनी अरति, अपनो अरति को निकालने के लिए. तो इसीलिए सबसे पहला है अरति. दूसरा फायदा है, अरति चली जाती है, दूसरा फायदा है वितृष्णा, भोगों के प्रति तृष्णा चली जाती है. तो भक्तिविद्यापूर्ण महाराज बहुत अच्छी व्याख्या देते हैं. वे बताते हैं पाप, कर्मकांड और भक्ति, बहुत सही रूप से वो मायने में सुनते हैं. वे कहते हैं पाप क्या है? वे बताते हैं पाप यानी हमारी चेतना उचित होती है, हमारी क्रिया गलत होती है. पाप का मतलब है हमारी चेतना उचित होती है, हमारी क्रियाएं गलत होती. आवर कॉन्शियसनेस इज गुड बट आवर एक्टिविटी इज इम्प्रॉपर. क्यों भाई, ऐसा कैसे? कॉन्शियसनेस कैसे अच्छा है? भोग करने की इच्छा किसे है? हमें ही है. तो जो पाप करता है व्यक्ति, बड़ा परिश्रम करके पूरी तरह से कॉन्शियसली क्या करता है? पाप करता है. सो पाप का एक्टिविटी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर कॉन्शियसनेस, इम्प्रॉपर एक्टिविटी. कर्मकांड ये लोग क्या करते हैं? जो कर्मकांड करते हैं वेदों में वर्णित, उनकी चेतना पूरी तरह से खराब है, लेकिन क्योंकि वो वेदों से संबंधित है उनकी एक्टिविटी क्या है? सही है. उनकी चेतना खराब है लेकिन उनकी क्रिया बराबर है, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगता है. अभी हम भागवतम में प्राचीनी भरिषद की स्टोरी सुन रहे हैं, तो उन्हें पाप नहीं लगता है, वे कभी नरक नहीं जाते. हालांकि वे यज्ञों में अनेकों अनेक प्राणियों की हत्या करते, कहीं वर्णन नहीं है कि वे नरक में जाते हैं. उन्हें रिएक्शन मिलता है लेकिन पाप नहीं लगता. रिएक्शन का मतलब है पुनः जन्म लेंगे लेकिन नरक कभी नहीं जाएंगे. इसलिए कर्मकांड, चेतना गलत है, क्रिया सही है. और भक्ति, भक्ति में चाहे चेतना सही रहो या क्रिया सही रहो, चाहे चेतना गलत रहो या क्रिया सही रहो, चाहे चेतना भी गलत रहो या क्रिया भी गलत रहो, ये न केन प्रकारे ना भगवान के संबंध में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका शुद्धिकरण गारंटीड है. कोई भी हो, वेदर योर कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर और नॉट, वेदर योर एक्टिविटी इज प्रॉपर और नॉट, बट द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा सम और अदर, यू विल बिकम प्यूरिफाइड. आप तुरंत शुद्ध हो जाओगे. और उसका उदाहरण है सबसे पहले प्रॉपर चेतना, चेतना सही है लेकिन एक्टिविटी गलत है। यशोदा माता का चेतना सही था लेकिन एक्टिविटी क्या कर रही थी, कृष्ण को डांट रही थी, कृष्ण को बांध रही थी, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। लेकिन यशोदा माई का प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो एक बार प्रभुपाद के चार शिष्य थे, ये अमेरिका में थे, प्रभुपाद के टाइम की बात है। तो चारों शिष्य अलग अलग जगह थे अमेरिके के, और चारों शिष्य थे वे ड्रग डीलर्स थे, वे ड्रग बेचने का कार्य करते थे। लेकिन ये न कि न प्रकार उन्होंने प्रभुपाद का पुस्तक मिला, प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ा और भक्त बन गए। और भक्त बनने के बाद उन्हें समझ गया, भगवान बोले थे यत करोषि यदश्नासि यज्ञोषि ददासि यद, जो कुछ आप कार्य कर रहे हो किसे अर्पण कर दो, भगवान को। क्या कार्य कर रहे थे वे, ड्रग बेचने का। तो चारों व्यक्ति, चार अलग अलग, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, चार अलग अलग भाग में अमेरिका के, वे लोग ड्रग बेचते थे और पैसा लाके प्रभुपाद को देते थे। ड्रग बेचते थे, पैसा लाके किसको देते थे, प्रभुपाद। पढ़ा था ना यत करोषि यदश्नासि, जो भी कार्य करो उसका फल किसे दो, भगवान को दो। और बड़े खुश हो गए। लेकिन एक दिन, साथ ही सेम डे, चारों के चारों भक्त जो एक दूसरे को जानते नहीं, वो जो गलत कार्य कर रहे, चारों भक्त एक ही दिन अरेस्ट हो गए पुलिस के द्वारा। चारों को किसने अरेस्ट किया, एक ही दिन पुलिस ने। चारों जेल में गए, दो साल की सजा काटे, वापस आके भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद की। देखिए, कार्य गलत था, चेतना सही थी, इसलिए भगवान ने उनके कार्य को भी क्या कर दिया, सही किया कि नहीं किया, कार्य को भी उनका सही कर दिया। नो, सेकंड एग्जांपल इज इम्प्रॉपर कॉन्शियसनेस प्रॉपर एक्टिविटी। हमारी चेतना गलत है लेकिन क्रिया सही है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है 10वें स्कंद के 42वें अध्याय में, 42वें अध्याय में, और यह अध्याय है कुब्जा का। भगवान कृष्ण जब मथुरा में जा रहे थे, जिसने बताया, तो उन्होंने पहले वॉशरमैन का हरिबोल कर दिया, उसके बाद सुदामा का भी पूरी तरह से उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर भगवान घूम रहे थे, तो सोचिए मथुरा में कोई चंद लोग नहीं थे, 10-15 लोग नहीं थे, मथुरा में करोड़ों करोड़ों लोग रहते थे उस समय। तो इतने सब लोग, कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए सभी करोड़ों करोड़ों लोग रास्ते पे आ गए थे, पूरी उत्कंठा से देख रहे थे कौन है ये भगवान। तो इतने करोड़ों करोड़ों लोगों में भगवान ने दृष्टि डाली किस पे, कुब्जा पे। अभी आचार्यगण कहते कि अरे इतने लोगों में कुब्जा पे ही क्यों दृष्टि डाली, तो सबसे पहले कारण था क्योंकि कुब्जा को भगवान दया दिखाना चाहते थे। कृष्णा वॉन्टेड टू शो कंपैशन ऑन कुब्जा। कुब्जा के ऊपर क्या दिखाना चाहते थे, दया दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इतने दूर में, इतने सभी लोगों में सबसे पात्र व्यक्ति, जो कि सबसे अपात्र है, वही भगवान की कृपा का क्या बनता है, पात्र बनता है। इसलिए कुब्जा पे क्या किया उन्होंने, दृष्टिक्षेप किया। दूसरा कारण आचार्य बताते क्योंकि वह दूर से कुब्जा का केवल चेहरा देख रहे थे। दूर से चेहरा तो कुब्जा बहुत सुंदर थी दिखने में, लेकिन कुबड़ी थी, कुबड़ी तो दिखा नहीं, दूर से भगवान को केवल उनका सुंदर चेहरा दिखा, इसके उसके प्रति उन्होंने क्या किया, अपना ग्लांस डाला। क्योंकि भगवान सोच रहे थे अरे मैं वृंदावन छोड़ दिया, भगवान क्या केवल 11 साल थी, वृंदावन छोड़ दिया, वहां पे मुझे गोपीगण इतना प्रेम करते, यहां पे कोई दिख नहीं रहे प्रेम करने वाला, यही सुंदर स्त्री शायद ये प्रेम करेंगी मुझसे, इसलिए उसके ऊपर क्या कर दिया, दृष्टिक्षेप डाल दिया। और कुब्जा के ऊपर दृष्टिक्षेप डालने के बाद कृष्ण उन्हें कहते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कात्वं वरोरुएतद् हनुलेपनम् कस्यांगे वा कथयस्व साधुनः देह अवयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद् भविष्यति। तो भगवान उसे वरोरुह के नाम से पुकार रहे हैं कुब्जा को। वरोरुह का मतलब होता है कि एक सुंदर पैरों वाली। वरोरुह का मतलब क्या है, एक सुंदर पैरों वाली। एक्चुअली कुब्जा का नाम भागवतम में आता ही नहीं है, कुब्जा है उसका नाम नहीं है। और यह श्लोक में त्रिवक्र कहा गया है उसे। तो कुब्जा इतनी इनसिग्निफिकेंट थी, इतनी छोटी व्यक्ति थी कि भागवत में उसका नाम ही नहीं दिया है। उसे आइदर कुब्जा कहा गया है, जो कि उसका वर्णन है, कुबड़ी थी इसलिए कुब्जा, या फिर उसे त्रिवक्र कहा गया है। नेक, वेस्ट और लेग, तीन जगह वह बेंड हो गई थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था, त्रिवक्र। सो शी वॉज नॉट इवन नेम्ड, उसका नाम भी किसी को पता नहीं था। इतनी इनसिग्निफिकेंट कुब्जा के प्रति भगवान आकर्षित हो गए और उसे क्या कह रहे हो, आप कैसे हो, सुंदर अंगों वाली हो। तो कोई बोलेगा अरे ये क्या है भाई, कोई ब्रह्मचारी को बोलेगा कि अरे तुम्हारे बाल एकदम रेशम के जैसे लंबे लंबे हैं, ब्रह्मचारी तो गुस्सा हो जाएगा, बाल है ही नहीं तो क्यों आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। किसी व्यक्ति जो सुंदर दिखता नहीं उसको आप जाके बोलेंगे आप बहुत सुंदर हो, गुस्सा हो जाएगा। तो यह कुब्जा का जोक मार रहे थे क्या भगवान कृष्ण कि अरे तुम बहुत सुंदर अंगों वाली हो, तीन जगह उसका अंग वक्र हुआ था, तो क्यों भगवान वरोरू बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान बोल श्रेयस ततस्ते न चिरात भविष्यति। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वरोरू बोल रहा हूं क्योंकि मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है, और जस्ट अभी काल का देर इज सम अमाउंट ऑफ टाइम, केवल कुछ काल बाकी है, जो मैंने बोला वह शब्द क्या होने वाला है? सच होने वाला है। therefore one of the name of Krishna is सत्यकाम। भगवान का एक नाम क्या है? सत्यकाम। भगवान जो कुछ बोलते हैं वह क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। और हो ही गया, देखा ना आपने कुब्जा को, हालांकि भगवान ने वरोरू बोला, थोड़ी देर के बाद कुब्जा को भगवान ने अपनी कृपा दिखाई, उसके हनोटी और उसके पैर पे पैर रख के उसे सीधा किया और कुब्जा को एक बहुत सुंदरी के रूप में क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। अभी कुब्जा का भाव कृष्ण के प्रति ये कॉन्शियसनेस कुछ अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि कुब्जा यहां भगवान से शारीरिक स्तर पे, ना कि गोपियों की तरह, गोपियां भगवान से आध्यात्मिक स्तर पे प्रेम कर रही थी, कुब्जा भगवान के प्रति काम रूप भावना से देख रही थी, इसलिए उसकी चेतना वाकई में क्या नहीं थी? सही नहीं थी। लेकिन कृष्ण के संबंध में आने से जस्ट काल का प्रभाव था कि उसकी चेतना भी क्या हो गई? शुद्ध हो गई। इनफैक्ट कुब्जा का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि कुब्जा कौन है? कुब्जा है सत्यभामा की विस्तारित स्वरूप है। और सत्यभामा कौन है? सत्यभामा ये भगवान की भूदेवी शक्ति है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो कुब्जा क्यों तीन जगह पूरी तरह से वक्र हुई थी? क्योंकि उस समय धरती पे पूरी तरह से जो दानव है, कंस इत्यादि उनके जो मित्र है, उनका बहुत अत्याचार बढ़ चुका था, इसलिए वह तीन जगह क्या हो गई थी? झुक गई थी। तो कृष्ण उसके पास गए और उसे वरोरू बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तुम्हारा भार निकालने के लिए आया हूं और कुछ समय की बात है कि यह सब भार निकल जाएगा और तुम इस भार से क्या हो जाओगी? मुक्त हो जाएगी। So this is devotional service. एक्टिविटी सही था कुब्जा का, उसने गंध किसे अर्पण किया? कृष्ण को। चेतना कैसी थी? कामुक थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? चेतना क्या हो गई? शुद्ध हो गई। पहले केस में चेतना अच्छी थी, क्रिया गलत थी, एक्टिविटी कनेक्टेड टू कृष्णा, परिणाम क्या हुआ? एक्टिविटी भी शुद्ध हो गई। तीसरा केस देखेंगे हम। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि आपकी चेतना भी शुद्ध नहीं है, एक्टिविटी भी शुद्ध नहीं है। अरे बाप रे, लेकिन भाग्य क्या है? भाग्य है कि हम ये न किन प्रकार न भगवान से संबंधित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है नल कुवेर मणि ग्रीव। क्या कर रहे थे मंदाकिनी में? गायत्री कर रहे थे क्या? जप कर रहे थे क्या? कर रहे थे मंदाकिनी में, या फिर कुंभ मेला के समय वहां पर शुद्ध होने के लिए पूरा चरणामृत पी के तपस्या कर रहे थे? नहीं, पहले तो मदिरा पी के रखी थी, उससे पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड थे ही थे पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद उनका प्राइड, उनका गर्व, उनकी वेल्थ, उनका धन, इसका भी उन्हें क्या था? इंटॉक्सिकेशन था, उसी वजह से भी पूरी तरह से मद्य थे। इनफैक्ट जब नारद उन्हें पास से गए, उन्होंने तनिक भी चिंता नहीं की कि नारद मुनि का सत्कार किया जाए, एटलीस्ट अपने आप को ढका जाए, इतने बड़े साधु जा रहे हैं, इतनी भी उन्होंने चिंता नहीं की। लेकिन उनका भाग्य क्या था? ये न के न प्रकार न उनका संपर्क किससे हुआ? किससे हुआ? कृष्ण से हुआ। और परिणाम क्या हुआ? उनकी चेतना भी शुद्ध हो गई और उनकी क्रियाएं भी शुद्ध हो गई। दामोदर लीला, दोनों लोग, उन्हें क्या मिला? उन्हें भगवान के नित्य प्रचारक का पद भगवान ने प्राप्त किया, क्योंकि लाइव उन्होंने पूरी भगवान की बाल्य लीला देखी थी। तो इसीलिए भक्ति यह बहुत विशेष है, और इसीलिए सबसे पहले भक्ति का जो फायदा होता है हमें वो क्या है? हमारी चेत, हमारी अरति चली जाती है, और वितृष्णा, भोगों से जो हमारा आसक्ति है वह क्या हो जाता है? निकल जाता है। दूसरा उदाहरण है इम्प्रॉपर चेतना, इम्प्रॉपर एक्टिविटी, धोबी। धोबी का भी उदाहरण दिया हमने। धोबी की एक्टिविटी करेक्ट थी कि इनकरेक्ट थी? सही थी कि गलत थी? गलत थी, भगवान को गाली गलौज दे रहा था। उसकी चेतना बिल्कुल गलत थी, क्योंकि वो भगवान को कम समझ रहा था, कंस को बड़ा समझ रहा था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? उसका पूरा कर्म, उसका भौतिक देह ही नाश हो गया, भगवत धाम चला गया। श्री कृष्ण भगवान की, भगवान बिना कोई कारण के उसे क्या दे दिए, भगवान ने उसे मुक्ति दे दिया। चेतना भी गलत थी, क्रिया भी गलत थी, लेकिन भाग्य क्या था, किसके संपर्क में आया, भगवान कृष्ण। पौंड्रक, पौंड्रक की चेतना कैसी थी, खुद को क्या बोलता था, भगवान का अनुकरण कर रहा था, और क्रिया भी वैसी थी, भगवान युद्ध करने है तभी भी माना नहीं, भगवान ने उसे भी अपने सूर्य चक्र से क्या कर दिया, वध कर दिया, उसका देह चला गया, परिणाम क्या हुआ, भगवत धाम चला गया। तो इसीलिए भगवान के संपर्क में आने से वितृष्णा, चाहे आपकी एक्टिविटी गलत हो या चाहे आपका चेतना गलत हो, ये न के न प्रकार ना भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। भगवीता के 5वें अध्याय में 11वें श्लोक में बताया गया है, केवल इंद्रियैर अपीर, इस श्लोक में बताया गया है। साधारणतः हम जब भक्ति की बात करते हैं तो एक मैं प्रश्न पूछ नहीं सकता, बहुत लोग यहां पे, तो क्या भक्ति हम केवल इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं क्या, यह प्रश्न पूछा गया है। विष्णु चक्र ठाकुर पूछते हैं, मन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, इनफैक्ट उसका मतलब यह होता है हम केवल मुंह से अटर कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन कहां है, कहीं और है, बिल्कुल भी जप में ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी सुन नहीं रहे, क्या इसे भगवान स्वीकार करेंगे, क्या ऐसा जप करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। हालांकि जब हम जप करने बैठते हमारे रिश्तेदार सबसे पहले यही एक्यूजेशन लगाते हम पे, अरे क्या सिर्फ मुंह से निकाल रहा, मन तो है नहीं जप में, क्यों जबरदस्ती माला खींच रहे हो, बोलते कि नहीं बोलते, ऐसी माला करने से अच्छा है जो मन से आएगा वैसी माला कीजिए, जो मन से भगवान का नाम निकालेगा वैसी माला कीजिए। तो क्या उत्तर दे सकते हम, और वाकई में सच्ची में मन है क्या हमारा, कौन लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते कि 16 माला में हर एक माला के हर एक मंत्र के हर एक अक्षर पे मेरा ध्यान जाता है, कौन कह सकते कॉन्फिडेंटली, हाथ ऊपर कीजिए, नहीं है, तो उनकी बात एक दृष्टिकोण से सही है, मन तो है नहीं फिर भी जप किए जा रहे हैं, कैसा जप कर रहे, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और सबसे बड़ा वो प्रूफ है उसका, मन नहीं है उसका प्रूफ क्या है, जप करते करते हरे कृष्णा प्रूफ मिल गया, मन नहीं है इसलिए तो नींद आ रही है, मन नींद नहीं आती है तो क्या ऐसा जप करने से किसी की आध्यात्मिक प्रगति होती है क्या, क्या केवल इंद्रियों से, केवल हलवा हिला रहा है मन किच भी नहीं, पूरी तरह से मन हलवा हिलाने में और कुछ भी भगवान का ख्याल नहीं आ रहा है, मन से पूरी तरह से अलुप्त है, क्या उसकी प्रगति होगी। 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बताए, तो प्रभुपाद भी अच्छा ट्रांसलेशन देते हैं, केवल इंद्रिय रपीर, प्रभुपाद बताते हैं कि इवन ओनली विद द सेंसेस, इवन विद द सेंसेस, केवल इंद्रियों के द्वारा भी आप भक्ति करोगे तो भी आपका प्रगति होगा। शिल प्रभुपाद की, विश्व ठाकुर और आगे जाते हुए कहते हैं कि केवल आपके होठों से हरिनाम निकल रहा है, आपका मन बिल्कुल भी उससे कनेक्टेड नहीं है, फिर भी आपका भक्ति में प्रगति होगा। केवल इंद्रियर अपी, तो इसीलिए वेनवी से भक्ति, प्रभुपाद ने भक्ति का ट्रांसलेशन क्या किया है, डिवोशनल सर्विस। सो व्हाट कनेक्ट्स अस टू कृष्णा, हमें भगवान कृष्ण के साथ क्या कनेक्ट करता है, सर्विस, इसलिए सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिवोशन कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, उसका मतलब यह नहीं कि हम अभी कल से लेक्चर में सुना है माला लेके पेपर पढ़ के कान में डाल के प्रभु जी ने बोला है केवल होठों से किया, तो दैट इज लोएस्ट स्टैंडर्ड, वी आर नॉट डिक्टेटिंग दैट, वी आर नॉट सेइंग दैट यू शुड फॉलो दैट, बट आई एम सेइंग इवन इफ समबडी इज ऑन दैट स्टैंडर्ड, अगर वो इस स्तर पे है तो भी उसका थोड़ा ना बहुत प्रगति होगा। तो इसीलिए हमने समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि दिस इज व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट, सर्विस सेवा हमारा और कृष्ण के बीच का संबंध है, सर्विस इज कनेक्शन बिटवीन अस एंड कृष्णा। तो कभी इच्छा हो या ना हो, भक्ति हो या ना हो, सेवा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा और कृष्ण के बीच में क्या है, संबंध है, एंड डिवोशन मेक्स इट थिकर, और जो भक्ति है उसे क्या बनाता है, गाढ़ा बनाता है। डिवोशन विल गिव अस रियलाइजेशन, वो डिवोशन हमें ज्यादा क्या देगा, साक्षात्कार देगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा सर्विस, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अरति वितृष्णा, इजंट इट। सो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सम हाउ अदर वी हैव टू बी कनेक्टेड विद कृष्णा, और भगवान से जो कनेक्टेड रहता है उसका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से उद्धार होगा। सो दिस इज फर्स्ट benefit of hearing Krishna katha, second benefit of hearing Krishna katha, what is that? Vitrishna, हमारी तृष्णा चली जाती है. और कब चली जाती है? श्लोक में लिखा है तुरंत, जैसे ही भागवत कथा बैठते हैं नींद आ जाता है. दैट इज साइन ऑफ एडवांसमेंट. नींद आना एडवांसमेंट का साइन है. क्यों? क्योंकि आपकी पूरी चिंताएं चली गई, आराम से नींद में आ रहे हो. कहीं कहीं लोगों को नींद आती नहीं, नींद की गोलियां लेते, यहां पे भक्त आके आराम से बैठते हो एकदम कूलली घोर के. कोई लोग तो जोर जोर से घोरते हैं, उनको उठाना पड़ता है, प्रभु जी भागवत में डिस्टर्ब हो रहा है. वितृष्णा, बैठे बैठे हमारा सब कर्म चला जाता है कि नहीं? दैट इज प्रूफ दैट दिस श्लोक इज करेक्ट. बैठे बैठे हम शुद्ध हो जाते हैं, इजंट इट? सो दैट इज सेकंड बेनिफिट ऑफ हियरिंग कृष्ण. तीसरा बेनिफिट है, उसको हम गहराई में देखेंगे. शुद्धम सत्वम च शुद्धति, हृदय शुद्ध हो जाता है. तो एक छोटा सा मैंने श्लोक के लिए एक पीपीटी बनाया है जो कि आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम. तो सत्वम च शुद्धति, हृदय शुद्ध हो जाता है. किससे हृदय शुद्ध हो जाता है? भगवान कृष्ण की लीला सुनने से. तो हम भगवान की लीला समझ के ही समझेंगे कि भगवान की लीलाओं में भी जो लोग हैं उनका भी हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया था. तो हम कुछ कारण देखेंगे भगवान कृष्ण क्यों इस दुनिया में अवतरित हुए. तो ठाकुर भक्ति विनोद अपने चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में छठवें उसके अध्याय में, जिसे शौवर कहा गया है, उसमें बतलाते हैं कि कृष्ण की दो प्रकार की लीला होती है. एक नित्य लीला होती है और एक नैमित्तिक लीला होती है. नित्य लीला का मतलब है कि भगवान जो गोलोक धाम में अपने अप्रकट लीला में भी जो लीला करते हैं, जो कि गोलोक धाम में वह सदैव चली आ रही है, वो अखंडित होती है, उसे नित्य लीला कहते हैं. और भक्तिनाथ ठाकुर बतलाते हैं दूसरी प्रकार की लीला है, उसे नैमित्तिक लीला कहते हैं. नैमित्तिक लीला का मतलब क्या है? जो केवल भू वैकुंठ या फिर भू गोलोक जो है, भौम में वृंदावन है, उसमें जो भगवान लीला करते हैं, जैसे कि दानवों को मारना, किलिंग ऑफ डीमंस, दैट इज कॉल्ड एज नैमित्तिक लीला. अभी आध्यात्मिक जगत में कोई भगवान से ईर्ष्यालु तो है नहीं, तो भगवान को मारने के लिए कोई आएगा क्या? तो वह दिस एक्टिविटीज, दिस लीलाज आर कॉन्स्पिक्यूस बाय देयर अब्सेंस. ये आध्यात्मिक जगत में मौजूद नहीं होती है एक्चुअली. भय होएगा लीला को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई राक्षस आता नहीं है जो कि भगवान के ऊपर आक्रमण करेगा. तो इसे कहते हैं नैमित्तिक लीला. तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे साधकों के लिए कौन सी लीला सर्व अच्छी है, नित्य लीला की नैमित्तिक लीला? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो हम साधक है, जो पूरी तरह से हृदय उनका अनर्थों से भरा है, उन्होंने से ज्यादा नैमित्तिक लीला सुननी चाहिए, जिससे कि उनका क्या होता है, हृदय साफ होता है. सो ही इज रिकमेंडिंग दैट द मोर वी हियर नैमित्तिक लीला, द मोर विल बिकम प्यूरिफाइड ऑफ आवर मटेरियल कंटेमिनेशन. जितना ज्यादा नैमित्तिक लीला सुनेंगे भगवान का, उतना ज्यादा हृदय हमारा क्या होगा, साफ होगा. जैसे कि जो 18 दानों भगवान ने मारे भागवतम के 10वें स्कंध में, हर एक दानों पे भक्तिनाथ ठाकुर उसका एनोलॉजी देते हैं कि कैसा वह दानों एक अनर्थ हमारे हृदय में दर्शाता है, और वह लीला सुनने से वह अनर्थ निकल जाता है. तो इसीलिए हम दोनों प्रकार की लीला देखने का, देखते कितना समय देखने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण आए क्यों, क्योंकि आज जन्माष्टमी है. तो हम देखने का प्रयास करेंगे भगवान कृष्ण आए क्यों. अभी साधारणतः आप देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के बाहरी कारण है, एक्सटर्नल रीजंस फॉर अपीयरेंस, और अंदरूनी कारण है, इंटरनल रीजंस फॉर एक्स. तो वही अध्याय में मैं पढ़ रहा था, वैसे ही भगवान कृष्ण के दो कारण हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी कारण और अंदरूनी कारण. तो हम चेतन चेतामृत से ही पढ़ेंगे. सब लोग दोहराइए, इधर दिख रहा है सबको. पूर्वे ये न पृथ्वी वीर भार हरि बारे कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे. तो यहां पे बताया गया है कि पहले भगवान कृष्ण पृथ्वी में आए, क्योंकि चेतन महाप्रभु का चैप्टर इसलिए पहले बताया गया है. तो भगवान कृष्ण पृथ्वी पे क्यों आए? तो कोई शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण अवतार न हेला शास्त्र प्रचार ते भारा हरि बारे, जो पृथ्वी है उसका भार निकालने के लिए आए. लेकिन उसके बाद बतलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, किंतु कृष्ण रये हय अवतार काल भार हरण काल तते हैल मिसल। तो यहां पे बतला रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि हालांकि भार निकालने का काम यह कृष्ण का नहीं है, लेकिन कृष्ण उस समय क्यों आए, क्योंकि देयर वॉज कोइंसिडेंस ऑफ टाइम, भगवान कृष्ण का आने का समय और भार निकालने का समय दोनों मिक्स हो गए। मिसाल, मिसाल का मतलब है, मिशल का मतलब क्या है, मिक्स हो गए। और इसीलिए कृष्ण आए उस समय तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ कृष्ण कमिंग वॉज, एक साइड इफेक्ट था कि भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया। उसके बाद भगवान बतलाते हैं अनुसंग कर्म असुर मारण ये लागी अवतार कही से मूल कारण। तो यहां पे बतलाया गया है कि अनुसंग कर्म यही, तो इसलिए एज एक अनुसंग, अनुसंग मतलब साथ ही साथ भगवान ने क्या किया, जो दानव है उनका नाश किया। लेकिन मूल कारण, अभी मैं आपको मूल कारण बताऊंगा। एक्चुअली कृष्ण दानव का वध करते हैं, लेकिन दानव का वध करने में भी कृष्ण बाकी अवतारों से श्रेष्ठ है। जैसे कि हमने तात्पर्य में देखा था कि कृष्ण की लीला और बाकी अवतारों की लीला, इसमें भेद है। क्या भेद है, मैत्रेय मुनि पूछते हैं विष्णु पुराण में चैप्टर कैंटो 4 चैप्टर 15 में, मैत्रेय मुनि पाराशर मुनि से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह देव ने किया था तो हिरण्यकश्यपु वापस पुनः जन्म लिया, कौन से रूप में, रावण के रूप में। फिर रावण के रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किसने किया, राम ने, फिर भी उसने वापस जन्म लिया किसके रूप में, शिशुपाल के रूप में। ऐसा क्यों है, मैत्रेय मुनि पाराशर मुनि से पूछ रहे हैं। तो पाराशर मुनि ने बहुत सुंदर जवाब दिया विष्णु पुराण में। पाराशर मुनि कहते हैं कि एक्चुअली केवल एक ही अवतार है जो बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना कोई सोचे समझे पूरी तरह से मुक्ति देता है, वह अवतार केवल कृष्ण अवतार है, कृष्ण भगवान की। हालांकि हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह देव ने किया, हिरण्यकश्यपु नरसिंह देव को भगवान नहीं मानता था, वो सोचता तो ये तो कोई जीवात्मा है, ऊपर आधा सिंह है और आधा मानव है, नर सिंह, भगवान को साधारण सा मनुष्य मानता था और भगवान का कभी ध्यान किया नहीं। और भगवान ने जब उसका वध किया, क्योंकि भगवान ने वध किया, नरसिंह देव ने वध किया, इसलिए अगले जन्म में उसे बहुत अमाप मात्रा में संपत्ति, अमाप मात्रा में शक्ति प्राप्त हुई और उसका जन्म कौन से रूप में हुआ, रावण के। क्यों रावण बना इतना धनशाली बलाढ्यशाली, क्योंकि उसका वध किसने किया था, भगवान ने, क्योंकि कृष्ण ने नहीं किया था, मुक्ति नहीं मिली। बाद में रावण का वध जब राम ने किया, रावण तो 100% जानता था ये भगवान है ही नहीं। क्यों जानता था ये भगवान नहीं है, क्योंकि रावण को दो आशीर्वाद मिले थे। क्या आशीर्वाद मिले थे, कि वो केवल वानरों से और केवल मनुष्यों से मारा जाएगा। तो राम ने जब तीर छोड़ के वध करना करने के लिए तीर छोड़ा रावण का, उसे 100% पता, अगर मैं मरेगा तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से कौन है, मानव है, इसलिए वो मर गया। फिर भी रामचंद्र का ध्यान नहीं किया, उसे भगवान नहीं माना, इसलिए वापस उसका पुनर्जन्म हुआ कौन से रूप में, शिशुपाल के रूप में। अभी शिशुपाल जन्मतः ही भगवान का द्वेषी था, उठते बराबर रोया नहीं, वह क्वै क्वै नहीं किया उसने, उठते बराबर भगवान को गाली देना चालू किया, उठते बराबर ने मां के गर्भ से आते बराबर बाहर रोया नहीं, डायरेक्ट भगवान का गाली गलौज चालू किया। और कब तक चालू किया, दिन रात हर सेकंड किसी से भी मिलता है, मत चित्ता मत गत प्राणा ना करके भगवान का गाली गलौज करता था, किससे भी मिलता था, पता है वो कृष्ण कैसा है। और ऐसे करते वक्त ये न किन प्रकार है, उसका संबंध किससे हो गया, कृष्ण से। और मैंने बताया कृष्ण का मुख्य कारण इस दुनिया में क्या आना था, भगवान के भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो इसीलिए हालांकि शिशुपाल इतना निंदा किया भगवान का, इतना द्वेषी था, ये न केन प्रकार ने, वो कृष्ण से संबंधित होने के कारण भगवान ने जब उसका गला सुदर्शन चक्र से काटा तो सभी लोगों ने देखा कि उसके शरीर से उसका जीवात्मा आया और किसके शरीर में चला गया, भगवान कृष्ण के। विश्वनाथ चक्र ठाकुर रस पंचाध्याय के स्टार्टिंग में बोलते हैं ये तो बाहरी दृष्टिकोण है, वह भगवान के शरीर में नहीं गया, सायुज्य मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि भगवान सायुज्य मुक्ति नहीं देते, वह सीधे सीधे भगवान का आध्यात्मिक जगत में पार्षद बना। श्री कृष्ण भगवान की। अनुसंग कर्म ही आसुर मारण, आसुर को भी मारते हैं कृष्ण, तो बाकी अवतारों को मारने से भगवान का मारना क्या है, अलग है। लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है अरे भगवान कृष्ण की लीलाएं समझना इतना मुश्किल है, रामचंद्र भगवान की लीला बहुत आसान है समझने के लिए। तो तुलसीदास जी का एक रिश्तेदार था, उनका नीस था, भतीजा था, उनका नाम था नंददास। देखिए अभी तुलसीदास जी का नीस है, भतीजा है, वो लेट से हमारा कोई इस्कॉन में रिलेटिव है, तो हम स्वाभाविक ही चाहेंगे इस्कॉन में आए, श्री संप्रदाय में ना जाए। लेकिन ये नंददास जी वृंदावन गए और भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। वे एक दोहा रचे और नंददास जी को पूछते हैं, कहां कमी रघुनाथ में छोड़ दियो जो बाण। हे भाई नंददास जी, रघुनाथ में कौन सी कमी रह गई कि आपने उसको छोड़ दिया, बाण का मतलब छोड़ दियो बाण, उनको आपने क्या कर दिया, उनकी पूजा करना छोड़ दिया। नंददास जी बड़े स्मित हास्य किए और तुलसीदास को उनके दोहे में रिप्लाई कर दिया। नंददास जी बोले, मन बैरागी होए गयो, मन बैरागी होए गयो, सुन बंशी ताल। क्या हो गया, मैंने क्यों भगवान को रामचंद्र को छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मन बैरागी हो गया, क्या सुन के, बंशी की ताल, भगवान कृष्ण के बंसुरी की धुन सुन के। देखिए भगवान कृष्ण इतने आकर्षित है कि बाकी अवतारों के भक्तों को भी कभी कभी क्या कर देते हैं, आकर्षित करते। लक्ष्मी जी लाइन में खड़ी है भगवान की लीला में भाग लेने की, उन्हें एंट्री नहीं मिल रही। शिवजी को पूरा अपना लिंग बदलना पड़ा भगवान की लीला में एंट्री करने की, तब जाके उनको कुछ समय के लिए एंट्री मिली। कोई लोग स्पेसी चेंज करते हैं, कोई लोग अपनी पूरी चेतना चेंज कर देते हैं, तब जाके क्या होते हैं, भगवान से वे संबंध प्रस्थापित कर सकते। तो इसीलिए अवतार मारना यह भगवान कृष्ण के विशेष, डीमंस को मारना यह भगवान कृष्ण की विशेषता नहीं है। तो क्या कारण है, वह कारण अभी चेतन चेता हमने बताएंगे। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थितिला प्रेम नाही मोर प्रीत। तो भगवान बता रहे ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब, इस दुनिया में सब लोग क्या है, ऐश्वर्य से क्या है, पूरी तरह से व्याप्त है, जगत पूरी तरह से ऐश्वर्य से मिश्रित है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य से जो प्रेम है वह क्या हो जाता है, शिथिल। शिथिल का मतलब क्या है, ढीला हो जाता है। नहीं मोरा प्रीत, मुझे ऐसे प्रेम से क्या नहीं है, आसक्ति नहीं है, मुझे यह प्रेम अच्छा नहीं लगता। इसलिए आमारे ईश्वर माने आपना के ही ना, तार प्रेमे वश आमी ना हये अधीन। इसीलिए हमारे ईश्वर माने, जो मुझे ईश्वर मानते हैं, आपन के हीन, खुद को हीन मानते हैं, ऐसे प्रेम से मुझे तार प्रेम वश, उनके वश में मैं कभी भी आता नहीं हूं। तो इसलिए कृष्ण को एक डिससेटिस्फेक्शन था। तो डिससेटिस्फेक्शन कैसे दूर किया उन्होंने, माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न ज्ञान करे लालन पालन। तो यहां पे भगवान बता रहे इसीलिए माता मोरे पुत्र भावे, इसीलिए मैं ऐसा अवतार लेने का प्रयास करूंगा जहां पे मेरी माता मुझे क्या करेंगी, बंधन में फंसा देंगी। और इस बंधन में फंसाने की लीला को बोलते हैं, कौन सी लीला, कौन सी लीला बोलते हैं, दामोदर लीला। तो भगवान कृष्ण दामोदर लीला किए, वो जो कि चेतन चेता में बता रहे, क्योंकि वे अपने भक्त के प्रेम के अधीन होना चाहते थे। तो सभी को पता है दीपावली का दिन था, भगवान कृष्ण इधर उधर माखन चोरी करते थे, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। तो माता यशोदा मक्खन कर रही थी, बना रही थी, तो मक्खन बनाते वक्त बहुत सुंदर वर्णन आता है दामोदर लीला में, कि जो माता यशोदा है उनके हाथ में कंगन थे और माता यशोदा के मुख से भगवान का गुणगान निकल रहा था। भगवान का जब कीर्तन होता है तो साथ ही साथ करताल और मृदंग और नृत्य भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई करताल बजाने के लिए नहीं था, सवेरे सवेरे का समय था, माता के लिए ही मक्खन बना रही थी। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में हरेक चीज भी एक व्यक्ति होती है। तो माता हाथ का यशोदा के हाथों में जो कंगन था, वे सोच रहे थे कि माता इतना सुंदर गीत गा रहे भगवान का और हम इतने भाग्यवान हैं कि माता यशोदा के हाथ में हमें स्थान मिला है, तो क्यों ना हम माता यशोदा के कीर्तन में हाथ बटाए। तो कंगन जो माता यशोदा मक्खन बना रही थी, वो कंगन किसका कार्य करने लग गए? करताल का, करताल के जैसे बजने लग गए। फिर माता यशोदा के कान में बाली थी, कान की, तो कान की बाली भी अपने आप को खूब भाग्यवान समझ रहे थे कि हमें देखिए कौन सी स्थिति प्राप्त हुई है, भगवान के माँ के कानों के ऊपर हमें स्थान मिला है, कानों के पास हमें स्थान मिला है। तो माता यशोदा गीत गा रही, तो हमने क्या करना चाहिए, नृत्य करने के लिए कोई नहीं, इसलिए माता यशोदा मक्खन बना रही थी, व्हेन शी वाज चर्निंग द बटर, वो जो कान की बाली है वो क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। इतना सुंदर वर्णन आता है। बाद में माता यशोदा के स्तन में जो दूध था, वहां सोच रहा था कि अरे ये पद्म गंधा गाय का, जो लाखों लाखों गाय का दूध 8 गायों को मिलता है, वो 8 गायों को दूध ये 90 गाय को दिया जाता है, ऐसा पद्म गंधा दूध का मक्खन माता यशोदा बना रही है, ये मक्खन बनने के बाद कृष्ण मुझे आस्वादन ही नहीं करेगा, तो इसलिए माता यशोदा के स्तन का दूध है वह भी क्या करने लगा, बाहर आने लग गया, बोला भी मैं आत्महत्या करता हूं बाहर आके। तो यहां पे भगवान कृष्ण का ऐसा कीर्तन चल रहा था, कोई द्विधा में था, कोई प्रेम में था, कोई जल्लोष में था, लेकिन एक बात सभी लोग कर रहे थे, वह क्या कर रहे थे, भगवान का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जहां पे भगवान का यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि, और जहां पे भगवान कृष्ण का कीर्तन होता है वहां कौन प्रकट हो जाता है, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण सोए थे लेकिन उनका कीर्तन होने की वजह से नींद से उठे और मदर यशोदा मैया यशोदा के पास आ गए, और मैया यशोदा के पास आने के बाद मैया यशोदा का पल्लू खींचने लग गए, बोले कि यशोदा मैया मुझे आप दूध पिलाइए। तो यशोदा मैया जब भगवान के पास देखे तो उनको दूध पिलाने लग गई, लेकिन किचन में स्टोव पे पद्मगंधा गाय, वो जो पद्मगंधा गाय है उनका दूध रखा था, तो वो ऊपर से जाने लग गया। तो अभी ये लीला में हम देखने के प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने अभी सभी ऐश्वर्यों को छोड़ दिया, माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन अति ही न ज्ञान, जो भगवान को ज्ञान ऐश्वर्य में देखते हैं वह सभी चीजों को भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया। सबसे पहला चीज उन्हें छोड़ दिया उनका आत्माराम स्टेटस, आत्मारामाष्ट मुनि, भगवान का एक गुण है वह क्या है, आत्माराम। तो आत्माराम गुण छोड़ दिया भगवान ने, क्यों छोड़ दिया, आत्माराम का मतलब है भगवान को अपने अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं संतुष्टि पाने के लिए। लेकिन ये लीला में भगवान क्या चाहते थे, दूध प्राप्त करना चाहते थे, किसका दूध प्राप्त करना चाहते थे, यशोदा मैया का, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना आत्माराम का स्टेटस छोड़ दिया। सभी देवता लोग ऊपर से देख रहे थे, ये कैसे भगवान है, ये तो सर्व संतुष्ट है, इन्हें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं, यहां पे देखिए एक छोटी से दूध के लिए, कुछ चंद दूध के लिए क्या कर रहे हैं, यशोदा माई को पल्लू खींच रहे हैं। तो उन्होंने आत्माराम का त्याग कर दिया, किसका दूध पीने के लिए, यशोदा माई का दूध पीने के लिए। और अंदर जो दूध था वह दूध उबला क्यों, जो गोस्वामी बोलते हैं वह भी एक व्यक्ति था, वह सोच रहा था कि अरे बाहर अभी जो कृष्ण की मां है उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है, असीमित है, तो जो यशोदा मैया है उसका असीमित प्रेम कृष्ण प्राप्त कर रहे हो, कृष्ण उस प्राप्त करने की इच्छा भी असीमित है, तो वह दूध भी असीमित है, भगवान कृष्ण पीने की कैपेसिटी भी असीमित है और समय भी असीमित है, तो यह सब असीमित 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 चलते रहेगा, तो मुझे कौन पिएगा, इसलिए ऊपर आके आत्महत्या कर दी उन्होंने, मुझे पीने के लिए कोई है नहीं, ऐसा जीव गोस्वामी टीका करते गोपाल चंपू में। लेकिन भगवान ने अपनी संतुष्टि का त्याग कर दिया, आत्माराम स्टेटस का त्याग कर दिया, पहले गुण का त्याग किया भगवत्ता का। दूसरा गुण उन्होंने त्याग किया वो है आप्त काम, आप्त काम हम बड़े गर्व से कहते हैं, भगवद्गीता में लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा सा भी कार्य करेंगे आप भगवान के लिए तो आप बड़े से बड़े दुखों से बड़े खतरे से बच जाओगे। बाद में हम बताते बड़े शान से भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, थोड़ा सा पत्र पुष्प दे दो भगवान संतुष्ट होते, क्योंकि वह कौन है, आप्त काम। यहां पे मदर यशोदा मैया यशोदा ने उन्होंने ऑलरेडी दूध पिला दिया था, थोड़ा सा दूध पी लिया था, वो संतुष्ट होना चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, उन्होंने आप्त काम का छोड़ दिया, नहीं संतुष्ट होऊंगा मैं छोटे से दूध से, मैं संतुष्ट नहीं होगा, उन्होंने आप्त काम का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, दूसरा भगवत्ता त्याग कर दिया उन्होंने। तीसरी चीज भगवत्ता की त्याग की उन्होंने, त्रिगुणातीत, भगवान तीन गुणों के परे है, तीन गुणों के परे यानी वे दुख से परे हैं, सुख से परे हैं, वे अनर्थों के परे हैं, वे ना तो गुस्सा होते हैं ना तो किसी पे ज्यादा अतीव खुश होते हैं। लेकिन भगवान ने त्रिगुणातीत चीज का भी त्याग कर दिया। भगवान क्या हो गए? बहुत गुस्सा हो गए। इनफैक्ट भगवान स्वयं जो गुस्सा हो गए, भगवीता में बताते हैं कि काम क्रोध ये क्या है, दे आर गेट्स टू लस्ट ग्रीड एंड एंगर, दे आर थ्री गेट्स टू हेल। वहां भगवान क्रोधित हो गए। क्रोध बहुत स्वाभाविक है इस भौतिक जगत में। एक बार एक पति और पत्नी का झगड़ा हो गया, और जनरली क्रोध पहले मन में आता है, मन में जब उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो वोटों पे आता है, जिह्वा पे आता है, और जिह्वा में भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर हाथों में आता है। तो इनका झगड़ा ऐसे ही चालू है, पहले मन में द्वेष था, झगड़ा किया, फिर वोटों पे आया, फिर आना बानी हो गया, पति इतना गुस्सा हो गया उसने पत्नी को उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। और थोड़ी देर के बाद पति गया, भागा भागा दौड़ा पुलिस के पास, बोला मुझे अरेस्ट कर दो, अरेस्ट कर दो। पुलिस बोले क्यों अरेस्ट करना है आपको? बोले मेरे पत्नी को बालकनी से फेंक दिया। तो बोले क्यों, पत्नी मर गई क्या? नहीं मरी, इसलिए अरेस्ट करो। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको भी त्याग दिया, त्रिगुणातीत को भी त्याग दिया, और खुद क्या बन गए? क्रोधी बन गए, और बहुत गुस्से से अपने वोटों को दबाने लग गए। तीसरा गुण उन्होंने त्याग दिया, गुणा त्रिगुणात गुणातीत। चौथा भगवत्ता का गुण भगवान कृष्ण ने त्यागा, लक्ष्मीपति। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम। हम बड़े प्यार से बोलते हैं कि भगवान करोड़ों करोड़ों नहीं, असीमित लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है गोलोक धाम में। भगवान ने लक्ष्मीपति गुण का भी त्याग कर दिया। अरे कोई अगर कुबेर के घर में जन्मा हो, कोई पूरे वर्ल्ड बैंक का मालिक हो, पूरी दुनिया की संपत्ति उसके पास में हो, क्या वो उसके बैंक में जाके चोरी करेगा? ऑलरेडी मालिक है, चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्ष्मीपति खुद के घर में क्या करने लग गया? चोरी करने लग गया। चिंता नहीं की, लोगों को बोलने दो। सोचिए तिरुपति बालाजी कल अपने ही भंडार में आके चोरी करने लग गए, कैसा लगेगा? लक्ष्मीपति का स्टेटस छोड़ दिया भगवान ने। ही abandoned दैट क्वालिटी also। क्यों? क्योंकि उन्हें चोरी करना था। क्या करना था? माखन। यशोदा मैया को भी समझ में नहीं आता बहुत बार। तो एक बार गर्गाचार्य आए थे, तो यशोदा मैया ने पूछा कि भाई ये हमारा जो कान्हा है वे क्यों चोरी करता है माखन इधर उधर? गर्गाचार्य बोले आप उससे पूछिए। तो उन्होंने कान्हा को पूछा, कान्हा भाई तुम क्यों माखन चोरी करता हो? तो कान्हा बड़ा इमोशनल था, ही इज द रसराज, किसको कैसा आकर्षित करना उसे पता था। तो बड़े हृदय से एकदम इनोसेंटली मैया यशोदा की तरफ देखता है, बोलता मैया क्योंकि माखन का पहला शब्द माँ है। माखन का पहला शब्द क्या है? माँ है। जब मैं माखन को देखता हूं तो आपकी याद आती है, और मुझसे रहा नहीं जाता, उसे चोरी कर लेता हूं। अभी ऐसा बोलने का कोई डांटेगा? बोले बेटा चुरा, जितना चुरा नहीं चुरा जितना चुरा नहीं चुरा। कृष्ण कर्णामृत में आपने बिल्वामंगल ठाकुर एक सुंदर श्लोक लिखते हैं, श्लोक तो बोले नहीं हम, उसका उदाहरण ऐसा है। छोटे कृष्ण कान्हा मैया के पास आते, बोलते मैया मैया। मैया पूछते क्या बेटा क्या चाहिए? मैया मुझे एक कप दे दो। बोले कप क्यों चाहिए आपको, प्याला क्यों चाहिए? बोले मुझे दूध पीना है। मैया बोलती अभी दूध नहीं है, अभी दोपहर का समय, दूध नहीं रहता अभी। कान्हा पूछता है दूध कब आएगा फिर? मैया बोलती दूध रात में आता है। देखिए कान्हा ट्रिक्स्टर, ट्रांसेंडेंटल ट्रिक्स्टर। तो कान्हा बोलते हैं मैया रात यानी क्या होता है? तो मैया बोलती है रात यानी जब सब जगह अंधेरा होता है, अंधेरा छा जाता है, तब उसे रात कहते हैं। कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं, मैया मुझे दूध दे दो अभी रात हो गई है, अभी दूध दे दो मुझे, क्या हो गई है अभी, आंखें बंद करके। सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो यह लीला सभी को आकर्षित करती है। तो चौथे गुण का उन्होंने त्याग किया, लक्ष्मी पति। पहला कौन सा था? आत्माराम। दूसरा आप्तकाम। तीसरा त्रिगुणातीत। चौथा लक्ष्मीपति। पांचवें गुण का उन्होंने त्याग किया, अभय। मद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षत इंद्रो दहत अग्निर मृत्यु चरति मद भयाद। भगवान बताते कि मेरे भय से सब कुछ चलता है, हवा मेरे भय से बह रही है, सूर्य मेरे भय से तप रहा है, ऑन टाइम आता है, कभी लेट नहीं होता है, मृत्यु कभी किसी को मिस नहीं करती। ऐसा हो गया कि एक आदमी 50,000 साल का है, मृत्यु मिस कर गई वो आदमी को, किसके डर से सबको पकड़ के लेके जाती है? भगवान के भय से। ऐसे भय ने वो गुण का त्याग कर दिया। हम बोलते हैं भगवान का चरण ले, शरण ले लो, आप अभय चरण बन जाओगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान ने अभय गुण का ही त्याग कर दिया। सोचिए अभी भक्त कहां जाए,
भगवान ही भयभीत हो रहे हैं तो भक्त किसका आश्रय ले, वो खुद भयभीत हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने उसकी चिंता नहीं, भगवत्ता का त्याग कर दिया अभय गुण का। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम स्थितग्न मुहुश्वास कंपात्री रेखांग कंठम स्थितग्रे वदामोदरम भक्ति बद्धम। हाथ लेके रो रहे। कभी कभी एक भक्त ने कोई प्रवचन में बताया था कि भगवान एक्टिंग कर रहे थे रोने का, लेकिन बाकी भक्तों से करके क्या एक्टिंग नहीं कर रहे थे, भगवान एक्चुअली डर के मारे रोए थे। इट वॉज नॉट एक्टिंग, ही वॉज एक्चुअली क्राइंग इन फियर। वास्तविक रूप से भगवान भयभीत हो, किसका लेके, छड़ी देख के, किसके हाथ में, यशोदा माँ की। तो पांचवें गुण का उन्होंने त्याग किया, अभय, अभय का त्याग किया भगवत्ता का। और छठवां गुण तो बहुत विशेष है। हम बोलते हैं बड़े प्यार से कि भगवान मुकुंद है। मुकुंद का मतलब जो सभी भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान ने उस गुण का भी त्याग कर दिया। कैसे त्याग कर दिया, यशोदा माई के हाथ से उखल को बांधे गए। ही गॉट बाउंड बाय द लव ऑफ मदर यशोदा। उन्होंने चिंता नहीं किया कि लोग क्या बोलेंगे, अरे ये क्या लिबरेशन देगा, ये क्या मुक्ति देगा, खुद बंधा हुआ है। कोई बंधा व्यक्ति किसी को मुक्त कर सकता है क्या, लेकिन वो कैसे बांधे वो विशेष है। जब यशोदा माई बांधने का प्रयास कर रही थी, दो उंगलियां कम पड़ रही थी उस रस्सी बांधने के लिए। यशोदा माई इतना परिश्रम किया। नंद महाराज के घर कितनी गैये थी, 900,000। हर एक गैये को दो रस्सी रहती, एक गले से बांधने के लिए, उसका पैर बांधने के लिए जब दूध निकालते तब। तो उन्होंने 9x2 18,00,000 रस्सी जमा किया कृष्ण को बांधने के लिए। कितना लाख रस्सी, 18,00,000। और ऐसा नहीं कि कृष्ण का जो कमर है वो कमरा हो गया था, ऐसा नहीं कृष्ण कमर कमरा हो गया और वो इसलिए बांधते जा रहे, कमर उतना ही था, लेकिन 18,00,000 रस्सी बांधने के बावजूद भी कृष्ण के कमर को कस नहीं पा रहे थे। पूरे व्रज में जितनी गव्य थी उनकी रस्सी लाई, फिर भी नहीं बांध पा रही थी। कृष्ण बोले बहुत ज्यादा परिश्रम हो गया, मैं क्या करता हूं, अपने मुकुंद स्टेटस को उड़ा देता हूं। और लास्ट स्टेटस भगवत्ता का कृष्ण ने उड़ाया, कौन सा स्टेटस, मुकुंद। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता का त्याग कर दिया, किसके लिए, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न ज्ञाने करे लालन पालन। क्योंकि उनको ज्ञान भगवान की, इतना परिश्रम करने के बाद इतनू सा भी मदर माता यशोदा के मन में संभ्रम नहीं आया कि ये क्यों नहीं बांधा जा रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये भगवान हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बोले ये बांधने क्या, मैं बांधूंगी नहीं, और बांधूंगी, और रस्सी लाओ, जब तक बांधने छोड़ूंगी नहीं तुझे। भगवत्ता का तनिक भी उन्हें ध्यान नहीं है। दैट इज वॉट कृष्ण वॉन्टेड। और इसीलिए कृष्ण कौन से अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए। अरे बांधने के बाद फिर भगवान के जो दोस्त थे, अरे दिवाली का दिन है, भगवान इतने लेट क्यों सोए, ढूंढने लगे किधर है भगवान, किधर है। दोस्त लोग सब गोपाल लोग आ गए, भगवान बांध रहे थे। भगवान बोले मैं तुमको रोज इतना माखन खिलाता हूं, आज उसको रिपे करो। बोले क्या करना है, मेरे छुड़ाओ उखल बंधन से। दोस्त लोग गए छुड़ाने का प्रयास किए, वे उखल बंधन से भगवान को छुड़ा नहीं पाए। क्यों, क्योंकि वात्सल्य रस से बांधा गया था, साख्य रस से ऊपर वात्सल्य रस है, कैसे वो छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाए। फिर बलराम जी आए, बलराम जी बोले अरे क्यों, मैं बोला था तुमको कि अपने क्रियाओं को सुधारो, गलत कार्य छोड़ दो, अभी कर्मा भोगो, जो गलत कार्य के उसके कर्म मिले तुमको, भोगो इन कर्मों को। कृष्ण बोले बलराम जी भूल गए कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप शेष नाग हो, भगवान को, भगवत्ता को भगवान ने उसको जागृत किया। बलराम जी सुने मैं शेष नाग हूं, उनकी भगवत्ता जागृत हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगे हाँ हाँ मुझे पता है कौन है जिसने मेरे भाई को बांधा है, तुम्हें पता नहीं है क्या ये कौन है। मैया यशोदा सुन रही थी कान से, कौन है, बोलिए। बोले ये पूरे दुनिया का नियंत्रक है, ये पूरे दुनिया का सृष्टि करता है, और कौन है, बोले बोले ये पिछले जन्म में राम था, नरसिंह था, परशुराम का अवतार लिया, वराह का अवतार लिया, अलग अलग अवतारों का अवतार लिया, ठीक है। बोले और तुम कौन हो, मैं बोले शेषनाग, पूरी भौतिक दुनिया मेरे सर के ऊपर है, मैं जब फुकार करता हूं तो पूरे दुनिया में प्रलय आता है, मैंने अशोधन छड़ी लिया। बलराम जी बोला सारे अवतारों को मेरे घर में ही जन्म लेना था, भाग यहां से। बलराम जी सब भगवत्ता भूल गए, वहां से भाग गए। कृष्ण बेचारा बैठा था उधर, अभी कौन छुड़ाएगा, ना बलराम जी मदद कर सकते ना दोस्त मदद कर सकते, अंततः केवल एक ही व्यक्ति उन्हें छुड़ा पाया, वह है नंद महाराज। क्योंकि वात्सल रस से बांधवी गांठ केवल वात्सल रस वाला ही व्यक्ति छोड़ सकता है। तो इसीलिए माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न ज्ञाने करे लालन पालन। तो यहां भगवान बता रहे इसलिए उनका उत्तर है वन ऑफ द इंटरनल रीजन. दूसरा क्या है, सखा शुद्ध साख्य करे स्कंदे आरोहण तुम्ही कोण बड लोक तुम्ही आमी सम. ये लीला तो सभी को पता है, ब्रह्मविवन लीला हाल फिलहाल में ही बताई थी, भक्तों ने बहुत सुंदर वर्णन किया था. भगवान के भक्त जो कि साख्य रस में, वो भगवान से कैसे आदान प्रदान करते हैं, तू कौन सा बड़ा व्यक्ति है, तेरे से बड़ा कौन हूं, मैं हूं. जब भगवान खेल खेलते हैं तो खेल खेलते समय एक हार और जीत दो पैरामीटर्स होते हैं ना, और पहले जमाने में खेल खेलते थे जो हारता तो उसको कुछ पनिशमेंट लेनी रहती थी, पता है कि नहीं. तो एक खेल खेल रहे थे तो भगवान कृष्ण हार गए उनके सखाओं के साथ खेल खेलते हुए. तो जैसे हार गए गोप गोन बोले अभी आप पनिशमेंट लो, आपको जो पनिशमेंट बताया वो आप क्या करो लो. बोले क्या पनिशमेंट है, आपको गोपों को कंधे पे लेके भागना पड़ेगा. भगवान कृष्ण बहुत थक गए थे खेल खेल के, बोले नहीं करूंगा मैं, जाओ. तो गोप बोले अगर आपको पनिशमेंट लेना नहीं है तो आप गेम से बाहर हो जाओ. कृष्ण बोले आपको पता नहीं मैं कौन हूं. कृष्ण बोले आपको पता नहीं मैं भगवान हूं, आप मुझे पनिशमेंट देंगे, मैं सबको पनिशमेंट देने वाला हूं, यमराज भी मेरे सामने थर थर कांपते हैं, आप मुझे पनिशमेंट देंगे. बोले पनिशमेंट लेना है क्या, बोलो नहीं तो गेम से बाहर जाओ. कृष्ण को गुस्सा आ गया, कृष्ण बोले ठीक है, वो भी गेम से बाहर चले गए, देखते कैसा खेलते मेरे बगैर. और गोपगण खेलने लगे, कृष्ण को पूछा ही नहीं, कृष्ण वेट कर रहे हैं, गोपगण खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, कृष्ण का मन दुखा जा रहा है, तो मेरे बिना खेल रहे हैं. तो थोड़ी देर के बाद कृष्ण वापस गए, प्लीज मुझे ले लो ना अंदर. बोले अंदर आना है तो क्या लेना पड़ेगा, पनिशमेंट लेना पड़ेगा. कृष्ण बोले ठीक है, क्या पनिशमेंट लेना पड़ेगा. तो जो भी पनिशमेंट कृष्ण लिया, और फिर उन्हें कहां एंट्री मिली, गोपो के गेम में. तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम बड़ा नहीं है, तुम्ही आमी समा, एक दूसरे को उसे साख्य भाव कहते हैं. ऐश्वर्य क्या तनिक भी ज्ञान उन्हें नहीं, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अवतार लिया. और लास्ट कारण था इंटरनल रीजन फॉर कृष्णा टू कम ऑन दिस वर्ल्ड इज प्रिया यदि मान करी कर ए भरसना वेद स्तुति हैते हरे से मोर मन. प्रिय यदि मान करी, और लास्ट कारण था उनका अवतार लेने का माधुर रस का. माधुर रस का अर्थ है कि जब उनकी प्रिया मान करेंगी तो वे क्या करेंगे, उस वेदों का जो हिम्स है दैट ऑल्सो विल गेट स्टोलन फ्रॉम माई माइंड. यानी वेदों का जो गुणगान है वो सुनने से मुझे इतना आनंद होता नहीं, उतना आनंद मुझे तब होएगा जब मेरी प्रिया मुझसे गुस्सा होके मुझे डांटेंगी फटकारेंगी. सो दिस वन ऑफ द रीजंस व्हाई कृष्णा अपीयर्ड. ये तीसरा अंदरूनी कारण है भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हुए. तो अभी एक बहुत सुंदर लीला है, अगर भगवान कृष्ण किसके लिए आए, अपने भक्तों के द्वारा विजयी होने के लिए आए. लेकिन एक लीला हम सुनते हैं, बहुत प्रसिद्ध लीला है वह. उस लीला में बताया गया कि कृष्ण के द्वारा गोपियां हार गई. किसके द्वारा गोपियां हार गई, कृष्ण के द्वारा. तो हम देखेंगे लीला, ये क्या है बाय द वे आप देख लीजिए, इसे गुंजमाला का बीज बेरी, गुंजा बेरीज बोलते से. तो कैसे दिखते, इसलिए मैंने इसका फोटो डाला है. तो यहां श्लोक आता है चेतन चेतामृत के अंत लीला में, सब लोग द्वारे शीला दिया गोसाई समर्पिला, शीला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने गुंजमाला दिया दिला राधिका चरणे. तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चेतन महाप्रभु ने दो चीज दी थी, कौन से दो चीज दी थी, पहले गोवर्धन शिला और गुंजमाला. और यहां पे क्या लिखा है, गुंजमाला दिया राधिका चरणे. गोवर्धन शिला से चेतन महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन के पास निवास दिया, उन्होंने गोवर्धन अष्टकम भी बहुत सुंदर लिखा है. और गुंजमाला देने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को चेतन महाप्रभु ने राधा रानी के चरणों के पास स्थान दिया. तो अभी बहुत बार ये प्रश्न उठता है, चेतन चेतनामृत में इसका वर्णन नहीं है कि गुंजमाला इतनी विशेष क्यों है, गुंजमाला क्या है, इतनी विशेष क्यों है, राधिका रानी से उसका क्या संबंध है, क्यों इतनी प्रिय है राधा रानी से वे. तो उसके बारे में मुक्तचरित में बहुत सुंदर एक लीला रघुनाथ दास गोस्वामी बतलाते हैं. मुक्तचरित यह ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा था, और बहुत सुंदर उन्होंने एक वर्णन किया लीला. और जैसे कि मैंने बताया नूतन सी यस्य, वो लीला सबको पता है, लेकिन हमने कैसे सुनना चाहिए, जैसे हमने पहली बार सुने. तो हम थोड़ा डिटेल में सुनेंगे उस लीला को, क्योंकि मुक्त चरित से डायरेक्ट हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे. तो दिवाली का समय था वापस, दिवाली में बहुत लीला किया भगवान ने, तो दिवाली के समय कृष्ण को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि राधा रानी बहुत सुंदर सुंदर मोतियों के हार बना रही है। तो तुरंत भागे दौड़े कृष्ण गए गोपियों के और राधा रानी के पास और अपनी दो गैयों को लेके गए, उनके दो प्रिय गैयों का नाम है हंसी और हारिणी। अपने हंसी और हारिणी को लेके गए और गोपियों को बताने लगे कि हे गोपियों, आज दिवाली का समय है, तो दिवाली का समय होने के कारण आज मुझे क्या करना है, आज मेरे गैयों को सजाना है। तो आपके पास इतने मोती है, तो इतने मोतियों को आप क्या कीजिए, इन मोतियों को थोड़ा सा कुछ मोती मुझे दीजिए जिससे कि मैं इनके सिंगों को सजाऊंगा। तो टोटल कितने सिंग थे, केवल 4 सिंग थे। अभी ये देख के सब गोपियां हंसने लग गए क्योंकि भाव किसका ज्यादा है, रेट किसका ज्यादा है मार्केट में, गोपियों का। तो गोपियां हंसने लग गए। ललिता हंसते हंसते बोले कि अरे हाँ कृष्ण, अभी हम सब मोती अपने आप को ही दे देते, पूरे गवों को आप सजाओ, क्योंकि गव्य सजाने के बजाय अभी इस मोतियों का कोई और मूल्य रहा ही नहीं। कृष्ण बोले अरे नहीं नहीं, सब गवों के लिए नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे हंसी और हरिणी को सजाने के लिए चाहिए। तो ललिता बड़ी गुस्से में बोली, उसने सब मोती कृष्ण को बताए और बोले कि मुझे नहीं लगता कि ये मोती गवों के लिए फिट है, आपकी गव्य बहुत ऊंचे स्तर की, ये मोती बहुत निचले स्तर के, इसलिए हम आपको हमारे मोती नहीं देंगे। ये सुन के कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। कृष्ण ने बदला लेने का निर्णय लिया, अभी लूंगा आपसे बदला, तो अभी मैं बदलापुर जाता हूं। तो कृष्ण बहुत गुस्से में आए, सीधा यशोदा माई के पास आए नंदग्राम में, यशोदा माई का पल्लू खींचे, बोले मैया मैया, बोले क्या, मुझे मोती चाहिए। बोले क्यों चाहिए, मेरे गवों को सजाना है। तो इतने मोती से गव्य कैसे सजेंगी, नहीं मैं इसकी खेती करूंगा, इसे बोऊंगा और बहुत सारे झाड़ आ जाएंगे जिसपे मैं मोती इकट्ठा करूंगा, आई विल टेक द हार्वेस्ट ऑफ पर्ल्स। यशोदा माई बोले अरे कान्हा, ऐसा नहीं होता है, मोती सीप से आते हैं, जमीन से नहीं आते। यशोदा माई को कृष्ण बोले आप टेंशन मत लो, 3 दिन के अंदर मैं ये मोती, 3 दिन में मोती बोने के बाद 3 दिन के अंदर इस मोती को इसमें से अंकुर आएगा और 1 हफ्ते के अंदर उनमें से बहुत सुंदर मोती प्रकट होंगे। और कृष्ण ट्रांसेंडल ट्रिक्स्टर है, इतना प्यार से बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोले कि 3 दिन के अंदर इसमें से अंकुर आएगा। यशोदा माई बोले ले लो, उनको मोती की पोटली दे दी। अभी कृष्ण गए खेत में, पूरा उसको पहले बाउंड्री लाइन किया, उनको पता है गोपी लोग डेंजरस है, आके कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत नोकीले जो काटीले झाड़ होते हैं उससे क्या किया उन्होंने, पूरा उसको बाउंड्री वॉल डाली जिससे कि गोपी आके कुछ गड़बड़ ना करे। और फिर अपने मित्रों के साथ उसको पूरी तरह से बोया, पूरा पर्ल्स का उसको सो किया, बाद में उसमें मिट्टी डाल दी। तो अभी मिट्टी तो डाल दी, बीज भी चले गए, मोती भी चले गए, लेकिन उसको पानी देना है, पानी से थोड़ी झाड़ आने वाला, ये तो विशेष है, मोती का झाड़ चाहिए था। तो गोपियों को और उनको चिढ़ाना था, इसलिए अपने ग्वाल बालों को उन्होंने भेजा, बोले गोपियों के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि कन्हैया ने, कान्हा ने दूध मांगा है उनके मोतियों के झाड़ को देने के लिए। तो ये मित्र लोग गए, बोले हमको दूध चाहिए, बोले। तो गोपियों लोग वापस द्वेष भाव में, ट्रांसेंडेंटल द्वेष भाव में बोले हम दूध नहीं देने वाले, कान्हा को बोलो कि अपने गवों का दूध इस्तेमाल करो, और गवों का दूध इस्तेमाल करने के बावजूद अगर दूध कम पड़ा तो रेगिस्तान में जाओ और वहां से कैक्टस का दूध निकल के यूज करो, गो टू डेजर्ट एंड यूज द मिल्क फ्रॉम कैक्टस। आप देख रहे हैं कैक्टस के झाड़ को काटा तो दूध निकलता है। ये देख के बड़े गुस्सा हो गए, कृष्ण के पास न्यूज आ गई वापस, वो बड़े गुस्सा हो गए, वो गए नंद महाराज के पास, वो पूरा दूध लेके आए और दूध देने लग गए अपने मोतियों के झाड़ को। जैसा कृष्ण ने यशोदा माई को प्रॉमिस किया था, 3 दिन के बाद उस मोतियों में से अंकुर आ गए और तुरंत यशोदा माई को पकड़ के लेके आया खेत में, मैया मैया देखो अंकुर आ गए, लता आ गई, अभी इसमें से कुछ दिनों के बाद क्या निकलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर मोती निकलने वाले। यशोदा माई हंसने लग गए, बोले ठीक है आप करो, बाद में बताना रिजल्ट आने के बाद, नो शेयर मार्केट में पैसा डाला है, फायदा होगा कि नहीं पता नहीं, बाद में समय के बाद ही पता चलेगा, विश्वास तो था नहीं। तो मैं यशोदा हंसते हंसते चली गई। कुछ दिनों के बाद उसमें से वॉयलेट कलर के बहुत सुंदर फूल आए और इतना सुंदर सुवास था उस फूल में। एक अन्य लीला में एक आचार्य बताते हैं कि ये पृथ्वी का इसेंस, व्हाट इज इसेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अगर आप सार निकालने का प्रयास करोगे, पृथ्वी का सार क्या है, पृथ्वी का सार है गंध, द फ्रेग्रेंस, पृथ्वी का सार क्या है, फ्रेग्रेंस। तो ये फ्रेग्रेंस विशेष करके व्रज के, रज का आप सुगंध लोगे तो बहुत सुंदर सुगंध आता है। ये सुगंध कहां से प्राप्त होता है व्रज को, तो आचार्य कहते हैं कि जब मैया यशोदा कृष्ण का स्नान कराने के लिए उनके कपड़े निकालती है, वो कपड़े भगवान के दिव्य शरीर के साथ रहने की वजह से वो भगवान के शरीर का गंध एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कपड़े जब जमीन पे गिरते हैं, पृथ्वी पे गिरते हैं, पृथ्वी माता तुरंत उस गंध को अपने आप क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वह गंध वह फिर अपने पूरे दुनिया में फैलाती है, और उस गंध से झाड़ आते हैं, और वह गंध फूलों में आती है, और वह गंध जाती है सुंदर सुंदर तालाबों में व्रज के, श्री कृष्ण भगवान की। सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग हैज ओरिजिन इन कृष्णा। तो जब नेक्स्ट टाइम हम गंध सूंघेंगे पारिशानी के बाद पहला, तो किसका गंध सूंघ रहे हैं, हम कृष्ण का गंध सूंघ रहे हैं, और कैसा गंध आता है वह, चंदन, कर्पूर, मस्क और अगुरु, इनको मिक्स करके जैसा स्मेल आता है, दैट इज द स्मेल विच कम्स फ्रॉम कृष्णाज बॉडी। और इसीलिए व्रज में कृष्ण कभी साबुन इस्तेमाल नहीं करते, वे अपने आप को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, व्रज रज, क्या इस्तेमाल करते थे, व्रज की मिट्टी इस्तेमाल करते थे। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था लास्ट ईयर कार्तिक में, अकेले जा रहा था, गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो आगे मुझे एक व्यक्ति दिखा, पैजामा कुर्ता पहना हुआ था, तो जैसे मैं जा रहा था गोविंद कुंड के आगे, आपने देखा रहे बहुत सारा मिट्टी है, व्रज रज है, बहुत सुंदर ऐसा थिक लेयर है। थोड़ी देर के बाद 15-20 फीट आगे था वो व्यक्ति, रुक गया, बोला क्यों रुका है, तो उसने अपना सामान बाजू में रख दिया, पोटली थी बाजू में रख दी, बोले क्या करने वाला है, तो उसने कुर्ता निकाला, मैं और आश्चर्यचकित हो गया, उसने बनियन निकाला, मैं बोला इधर ही बैठने वाला लगता है, तो फिर उसने उसका पैजामा भी निकाला, मैं बोला बाप रे गोवर्धन के सामने, ऐसा नहीं करना चाहिए, गोवर्धन के सामने शौच क्रिया नहीं करना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण देखिए, इसलिए व्रज में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मैं भौतिक दृष्टिकोण देख रहा, अरे इधर ही बैठने वाला है क्या ये, तो थोड़ी देर के बाद देखा उसने पैजामा निकाला और केवल कच्छे में था, और वह व्रज में वो लौट गया और लोटपोट होने लगा, श्री व्रज रज मान धाम की, क्या करने लग गया, पूरे कपड़े निकाल के क्या करने लगा, व्रज रज में लोटपोट होने लग गया, मेरा ट्यूबलाइट गया, मतलब कैसा बड़ा अपराध युक्त मैंने क्या किया, विचार किया। हम सुनते कि व्रजधाम में जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आप को उल्टा पुल्टा करना चाहिए, व्रजराज मिलेगा, ऐसा सुना नहीं था कि कपड़े निकाल के उसमें स्नान करना चाहिए। मुझे इतना लज्जित लगा कि मैं थोड़ा वो आगे निकलने के बाद वहां के रज लिया और अपने सर पे डाला, मैं बोला एटलीस्ट उसका कुछ गुण मेरे अंदर आ जाएगा। तो यह है व्रजराज की महिमा, क्यों आती है महिमा, भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो कुछ दिनों के बाद वह सुवास बहुत सुंदर वायलेट कलर के फूल आए और पूरे वृंदावन की मक्खियां उसमें आकर्षित हो गई, मधुमक्खियां, और ये स्मेल पूरे वृंदावन में फैल गया। अभी जो कॉम्पिटिटर कैंप था कृष्णा का, उनके पास ये मैसेज वायरल हो गया, क्या वायरल हो गया, कि कृष्णा के मोतियों से झाड़ आ गए, उसमें से बहुत सुंदर फूल आए, फूल का फलों में रूपांतर हुआ और उस फल से सुंदर सुंदर मोती आने लग गए हैं, सुंदर सुंदर मोती आने लग गए हैं। 8 प्रकार के मोती होते हैं, नौ एक वाइल्ड बोर के सर में होता है, जो जंगली सुअर है उसके सर में होता है, एक नाग के सर में होता है, एक हाथी के सर में होता है, एक जो अपना सीप में जाता है उसमें के होता है, ऐसे 8 प्रकार के मोती है। वो मोती इतने सुंदर थे कि 8 प्रकार के मोतियों से ज्यादा सुंदर वो मोती, अगर 8 प्रकार के मोती आप कंबाइन कर दोगे, एक कर दोगे, उससे ज्यादा सुंदर ये मोती दिखने लगे। कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन कुछ लोग अप्रसन्न थे, कौन लोग अप्रसन्न थे, गोपिया, गोपिया बोली अरे तो नाक कट गई भाई, हमने उसे कुछ मोती नहीं दिया, उसने मोती की खेती कर दी। तो गोपियों ने प्लान बना दिया, प्लान तो बनाना पड़ेगा, नाक कैसे कट सकती है, गोपिया जीतनी ही चाहिए हमेशा। तो उन्होंने अपने एक सखी ने सजेस्ट किया कि बोले अभी क्या करेंगे हम, इमरजेंसी मीटिंग हुआ उनका एकदम, जैसा कि कोई इमरजेंसी युद्ध हो जाए तो मीटिंग ले लिया उन्होंने, इमरजेंसी मीटिंग लिया। तो एक मित्र ने, एक सखी ने सुझाव दिया कि हम कृष्ण से दुगना खेती करेंगे जिससे कि हमको ज्यादा प्राप्त होगा। दूसरी बोली हम ऐसे मोती उगाएंगे जो कृष्ण के मोती के डबल के साइज के। ये सब सुन रही थी तो ललिता थोड़ी सोबर थी, तो ललिता सोचने लगी अरे आप सब लोग तो इतने सोच रहे हो, क्या आपको गारंटी है कि आप मोती डालोगे तो मोती का झाड़ आएगा और कृष्ण के जैसे मोती आ जाएंगे। बोले कृष्ण के पास कोई सिद्ध मंत्र है, वो सिद्ध मंत्र जब तक हमको मिलता नहीं तब तक हमारे झाड़ों से मोती आने वाले नहीं। तो तुंग विद्या जो अभी तक शांत बैठी थी तो बोली कि हाँ कृष्ण के पास सिद्ध मंत्र, लेकिन वो मंत्र कहीं से ना कहीं से तो उसने प्राप्त किया रहेगा, तो कहां से प्राप्त किया रहेगा। तो तुंग विद्या बोलती है ये मंत्र इसने नंदमुखी से प्राप्त किया है, तो हम जाएंगे नंदमुखी के पास। तो सभी सखीगण नंदमुखी के पास गए और नंदमुखी बोला कि हमें भी मंत्र चाहिए, सिद्ध मंत्र जो आपने कृष्ण को दिया है जिससे कि हमारे भी झाड़ों से मोती उगने लगेंगे। नंदमुखी बोले अरे मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, सब मोह माया है। बोले ये तो वृंदावन के रज की ताकत है, इसमें कुछ भी उगा लो, इसमें से मोती क्या, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल परिक्ष लक्षावृते सुसुरभीर अभिपाल यंतम, ये व्रज रज की महिमा है कि इसमें कुछ भी डालो, इसमें से मोती हीरे जवाहरात सब कुछ निकलता है। कृष्ण के पास कोई सिद्ध विद्ध मंत्र नहीं, मैं आपको बताती हूं आप क्या करो, जाओ और मोती बो जाओ, बो यू गो एंड सो द सीड्स, और कृष्ण ने दूध से उसको सींचा है, आप मक्खन और घी से उसे सींचो और कृष्ण के मोती से और अच्छे मोती आएंगे। अभी ये गोपियां लोग व्रजवासी थे, बहुत सिंपल थे, और कौन कह रहे, नंदमुखी कह रहे, पौर्णमासी की रिलेटिव कह रही है, तो तुरंत उन्हें हाथ जोड़ के बोला ठीक है। सब लोग गए और अपने घर वालों के पास जाके भीख मांग ले, हमें मोती दे दीजिए, मोती दे। बोले क्यों चाहिए? बोले देखो कृष्णा को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, थोड़ा सा मोती ले, अभी लाखों लाखों मोती वो नो ले रहा है, हम भी वही बिजनेस चालू करेंगे। तो ले लिया मोती उन्होंने और जाके बो दिया पूरा, और कितने जमीन पे, दुगने जमीन पे, सबने सेवकों को लगाया। और अभी अपने बाबा लोग के पिताजी लोग के पास छुपके से जाके पूरा माखन पूरा घी पूरा दूध भी ऐड कर दिया उन्होंने, बोला कुछ कम नहीं रहना चाहिए। और दिन में 3 बार, सवेरे दोपहर शाम, ध्यान त्रियस्नो यस्य ध्यान संध्यम, 3 बार उसको घी मक्खन और दूध से सींचने लगे, इतना हद तक कि कुछ दिन के बाद जब ग्वाल बाल घर में आए तो उन्होंने अपने पत्नियों को देखा नहीं, उन्होंने अपने मां को पूछा अरे हमारे घर के सब मोती किधर है, डांटने लगे उनके मां को। मां बोले आप टेंशन मत लो, वो अच्छे बिजनेस में गए, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। फिर बाद में खाना खाते बैठे सब गोप बाल, तो बोले अरे इसमें माखन किधर है, घी किधर है, हम व्रजधाम में रहते हैं, माखन घी के बिना कैसे खाएंगे, किधर है सब माखन घी। बोले अभी शॉर्टेज है, वो कहां गया, सब खेत में गया, टेंशन मत लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है। तो नंद गोप भी सिंपल है, बोले ठीक है आएगा तब देखेंगे, अभी तो बिना घी के बिना माखन के खा लेंगे चपाती। पूरा शॉर्टेज हो गया व्रजधाम में, किसका, मिल्क प्रोडक्ट्स का, जो कभी हुआ नहीं था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे घी और मक्खन किधर जा रहा था, जमीन में जा रहा था। 3 दिन के बाद अंकुर आए, सब गोपियां खुश हो गई, बोले अंकुर आ गए। कुछ दिन के बाद वो झाड़ बड़ा हो गया और सब लोग देखो हमारा भी झाड़ आ गया, हमारी मोतियों से झाड़ आ गया। सब देख रहे थे लेकिन एक व्यक्ति शांत था, वह है विशाखा। विशाखा शांत थी, वो बोली अरे रुको, क्या हो गया? बोले ये झाड़ जो आया ना, ये कृष्ण के झाड़ जैसा नहीं दिख रहा है, ये झाड़ में कांटे है, कृष्ण के झाड़ में कांटे नहीं थे, और ये झाड़ के पत्ते थोड़े अलग है, ये पत्ते अलग है। तो विशाखा को जब बोला तो सबको टेंशन आ गया, तो तुरंत वे गए। कुछ दिन के बाद, एक दिन के बाद तुरंत देखा उन्होंने कि वह झाड़ एक कांटे वाले झाड़ में रूपांतरित हो गए। बड़े टेंशन में आ गए, अभी क्या करने का। तो इसीलिए कृष्णा को यह वायरल चला गया न्यूज कि अरे गोपियों ने झाड़ लगाए तो उसमें कांटे के झाड़ आ गए। नो हिमस्र लता, गोपियों ने कृष्णा के लता को डिस्क्राइब करने के लिए हिमस्र लता शब्द इस्तेमाल किया था। हिमस्र का मतलब है वॉयलेंट, या फिर हिमस्र का मतलब होता है पॉइजनस, और लता का मतलब होता है क्रीपर, उल्टा ट्रांसलेशन दे रहा हूं। तो लता कैसी थी वहां, पॉइजनस लता थी या हिमस्र थी, कृष्ण के बदले के भाव से आई हुई लता, ऐसा गोपियों ने डिस्क्राइब किया था। अभी कृष्ण हंसने लग गया, बोले एक्चुअल हिमस्र लता कौन सी है, इनकी है, क्योंकि इनकी लता में क्या है, कांटे हैं। और ये गोपियां पहले ही जख्मी हो गई थी, पहले ही दुखी थी, कृष्ण उस पर और नमक छिड़कना चाहते थे। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने मोतियों के हार बनाए और उनके सभी मित्रों को उस हार से सुशोभित किया, सभी गायों को, सभी बछड़ों को, सभी बकरियों को, सभी भेड़ियों को, सभी भैंसों को, सभी मंकी, सभी बंदरों को, और बंदरों के बच्चों को भी क्या कर दिया, सबको उनके माला से डेकोरेट को, सब जवान घूम रहे पूरे व्रज में क्या पहन के, मोतियों की माला, गोपी लोक का पूरा ईगो हरी बोल हो गया उनका, वापस गई। किसने एडवाइस दिया था माखन घी डालने का, नंदमुखी के पास, बड़े ताव में गए, नंदमुखी तुम बहुत डुप्लीकेट आदमी हो, तुम कृष्ण के साइड हो, तुमने गलत हमें एडवाइस दे दिया, उसकी वजह से हमारा इतना माखन घी गया, पूरे व्रज धाम के मोती हमने डाल दिया, हमारे माता पिता हमारे पति सब हमको गुस्सा करेंगे, कैसा गलत एडवाइस दे दिया आपने हमें। नंदमुखी ब्राह्मण निकलते, वो शांति शांत शांत रहो, बोले कोई टेंशन नहीं, कोई लोग ड्यूटी रहते कितना भी गुस्से से आप फोर्स में मारो, शांति बोलते हैं, स्मित हास्य दे देते हैं, अपना गुस्सा शांत हो जाता है कि नहीं। तो नंदमुखी शांति से बोली, अरे आप लोग को उन्होंने चीट किया है, आपको फंसाया है। बोले कैसा फंसाया? बोले आप लोग ने कृष्ण के जैसा आपके फील्ड्स, आपके खेत के आजू बाजू में फेंस डाला था क्या, रक्षण के लिए फेंस डाला था क्या? गोपी बोले नहीं, ये तो हम भूल ही गए। बोले कृष्ण ने मधुमंगल को एक बड़ा पॉट स्वीट राइस का दिया, खीर का पॉट दिया, उसे रिश्वत दी और मधुमंगल को कहा कि रात में जाओ और गोपियों के सब पेड़ को उखाड़ो और अपने खेत में डालो और कांटे वाले पेड़ उनके खेत में जाके बो डालो। और उसने एग्जैक्टली वैसा किया। मधुमंगल ने क्या किया, रात में गया और पूरे आपके झाड़ डाले उसके खेत में लगाए और बाकी बच्चे यमुना में फेंक दिए और कटे कांटे वाले झाड़ तुम्हारे खेत में डाले। और इतने प्यार से बोला नंदमुखी ने कि गोपी लोग तो भोली भाली है, भोली भाली गोपी बोलते व्रज भाषा में, भोली भाली गोपी है। बोले ठीक है। राधा रानी बोली अभी वो इसकी बात ठीक है या नहीं है, हाथ में अंत्यतः हमको क्या आया, जहरीले झाड़, कटीले झाड़, हिमस्र लता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं। तो ये लीला तो हमने सब सुनी है। फिर बाद में कृष्ण के पास जाते हैं, बहुत सुंदर लीला है वो, नित्य लीला में आता है, हमारे ध्यान के परे है कि बहुत एसोटेरिक लीला है, लेकिन बहुत आदान प्रदान होता है कृष्ण के बाद। कृष्ण बोलता है अभी पूरे व्रज में किधर भी मोती नहीं, तो अभी मैं अकेला मोनोपोली वाला आदमी हूं, तो अभी मैं जो भाव मांगू वो आपको देना पड़ेगा। तो गोपी बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी भाव मांगोगे तो मेडिएटर रखते हो। मेडिएटर कौन रहता है? सुबल मेडिएटर रहता है। तो सुबल को मेडिएटर बनाते हैं कि तुम भाव फिक्स करो। फिर बहुत आदान प्रदान होता है। फिर कृष्ण बोलते हैं मैं ललिता के साथ युद्ध करूंगा, फिर इसके गले में जाके बैठूंगा हार करके। तो ऐसा बहुत सारा आता है। लेकिन ये लीला हमने सुनने के बाद एक थोड़ा सा प्रश्न उद्भव होता है, प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? इस लीला में कौन जीता, कौन जीता इस लीला में? तथाकथित कृष्ण जीते ना, क्योंकि कृष्ण के खेती से मोती आए और गोपियों की खेती से हिमस्रलता आई, उनके पोती से क्या आई, हिमस्रलता आई। ऐसे कैसे हो सकता है? रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के फॉलोअर है। रूप गोस्वामी कौन से कैंप के हैं? वे केवल और केवल राधा रानी के कैंप के है। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हमें पता नहीं कृष्ण कौन है, हम कृष्ण की पूजा इसलिए करते क्योंकि वे राधा रानी को प्रिय है। यह भाव है गौड़िया वैष्णव रूप गोस्वामी रूपानुगास का। तो रुआगानुगा रूपानुगा होने के बावजूद भी रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसी लीला कैसे लिख सकते जिसमें विजय कृष्ण का हो रहा है ना कि गोपियों का? इसका रेफरेंस किधर भी आता नहीं। तो माधवानंद प्रभु लिखते हैं, वे कहते हैं कि हम व्रज में गए थे तो हमने इस लीला के बारे में बहुत पूछताछ की, तो एक व्यक्ति ने बताया उन्हें, एक माता ने बताया वहां ने जो लोकल व्रजा से, बोले कि जो हिमस्रलता थी वे हिमस्रलता कोई और झाड़ न होके गुंज माला के झाड़ थे। जो हिमस्रलता गोपियों के कष्ट के द्वारा उत्पन्न हुई थी वो किसके झाड़ थे? वह गुंज बेरीज के झाड़ थे, गुंज फल के झाड़ थे। और क्योंकि गोपियों के प्रेम से इतनी मेहनत करने के बाद पूरा मान गोपियों का कृष्ण के प्रति था, इतने प्रेम से उन्होंने सींचा था, उस प्रेम का रूपांतर हुआ गुंजमाला के बीज में। और इसीलिए भारी दृष्टिकोण से कृष्ण के झाड़ से मोती आए, जो भारी दृष्टिकोण से आकर्षित है, मूल्य के दृष्टिकोण से ज्यादा कीमती है, लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से हालांकि गुंज बहुत ही विषैले गुंज जो बेरीज रहते हैं, गुंज के जो बेरीज रहते हैं बहुत विषैले रहते हैं, बहुत कड़क रहते हैं, उसमें मोती की सी चमक नहीं रहती। भारी दृष्टिकोण से हालांकि वे विषैले, हालांकि उसके झाड़ कांटे वाले है, लेकिन क्यों में उस, क्योंकि उनमें गोपियों का प्रेम है। कृष्ण हमेशा अपने गले में गुंज की माला पहनते हैं और इसीलिए वह माला कृष्ण को मोतियों की माला से भी ज्यादा प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी की। तो इसीलिए यह गुंज माला का ओरिजिन है। तो इसका जो कनेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों प्रिय है भगवान को गुंजमाला? क्योंकि वो राधा रानी और गोपियों के प्रेम से उत्पन्न हुई हुई गुंजमाला है। उसी प्रकार हमारे भक्ति में बहुत बार एक्सटर्नल रूप से हमारे जो रिजल्ट्स रहेंगे दैट मे नॉट बी सो अट्रैक्टिव, वो इतने आकर्षित नहीं हो सकते, वो इतने चमकीले नहीं हो सकते, लेकिन भगवान उस रिजल्ट्स को नहीं देखते। वे किसे देखते हैं? भगवान आपके भक्ति को देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं। और यही लेसन हम इसे पढ़ सकते हैं। सो क्यों भगवान आए? भगवान इसलिए आए क्योंकि जैसे कि प्रीवियस प्रिया यादि मान करी करे भरसन वेद स्तुति हैते हरे सही मोर मना। तो भगवान आए क्योंकि वे गोपियों के द्वारा डांट फटकार सुनना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि वेदों के मंत्र। तो यह लीला भी भगवान ने वृंदावन धाम में की। तो अभी समय हो गया है, क्योंकि डेढ़ दो घंटा बोला था मुझे, दो घंटा हो चुका है, तो हम यहीं रुकने का प्रयास करेंगे। तो हमने कुछ चंद चीजें देखी, उसके बाद भगवान के जन्म के बारे में हम विस्तार चर्चा करने वाले थे, लेकिन वह कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम यहीं रुकते। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।
आइए आप हम सब मिलकर वामन देव प्रभु को धन्यवाद देंगे, हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। और इसके बाद इमीडिएट जैसे शेड्यूल में लिखा था कि ग्रेस जय गोपाल प्रभु दूसरी कथा देंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अंदर किचन में करीब करीब 35 भक्तों की जरूरत है 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे के बाद और 20 भक्तों की जरूरत है। तो जो भक्त ये सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ 30-35 भक्त चाहिए। तो जो भी जाता है वहाँ ड्राई फ्रूट कट करना और सब्जी कटिंग की सेवा है, जो जाना चाहते हैं वो नीचे जा सकते हैं।